और मई का माता जी लोग मई का किसको बोलते हैं? माता पिता के घर को, उसमें सब आप रह सकती हैं। विवाह के बाद, शादी के बाद मायके में रह सकते हैं आप लोग? नहीं रह सकते ना। तो ये संसार हम सबका मायका है, आदमियों का भी मायका है और स्त्रियों का भी मायका है। यहां रह नहीं सकते सदा के लिए, ये बात समझ में पहले आनी चाहिए। मायके में मौज मनाते हैं, घर में जाती हैं जब स्त्रियां अपने माता पिता के, तो बेपरवाह हो जाती है, अपने घर को मानती है, उसको जैसे चाहे जैसे सामान को इधर उधर करती हैं। ऐसे इस दुनिया में हम जाए जैसे वैसे करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन यहां रह नहीं सकते सदा के लिए, ये मई का है। असली घर कौन सा होता है स्त्री के लिए? पति का। और भगवान क्या है? सात्वताम पति, वो भक्तों का पति है, वो प्रेमी जो उनके हैं उनके लिए वो पति है, और उसके पास जाएंगे तभी सुखी हो पाएंगे। ये संदेश है भागवत का। ये संसार मई का है, मायके में सुखी नहीं रह सकते सदा के लिए। इसलिए ये संसार में जो माया का काम क्या होता है? दो काम है माया के, जो नहीं है वो दिखा देती है, जो वह है उसको छुपा देती है। माया दो काम करती है, जो नहीं है वो दिखा देती है और जो है उसको छुपा देती है, उसको माया बोलते हैं। ये माया किसकी है? देवी है एष गुणमयी मम माया दुर्तया, भगवान कहते ये माया मेरी है, मैंने इस माया को यहां संसार में रखा है। कोई पूछे क्यों रखा है माया को भगवान? हमको बांधने के लिए रखा है क्या? हमको पकड़ के काबू करके रखने के लिए रखा है? बोलो नहीं। जैसे कोई भी देश, कोई भी सरकार अपने देश की सुरक्षा के लिए कस्टम का डिपार्टमेंट रखती है कि कोई गलत आदमी गलत चीजें लेकर मेरे देश में ना आ जाए, कोई असला ना ले जाके आए, कोई मादक पदार्थ ना लेके आए, ऐसे सबकी चकास होती है ना। ऐसे इस जगत से कोई भौतिक इच्छा लेके भगवत धाम न जाए, इसलिए माया सबकी चकास करती है। भगवान के तरफ से हम सबकी चकास करने के लिए, हम सबको ठीक तरह से एक्सरे निकाल के देखने के लिए कि इसकी दिल में कोई भौतिक इच्छा तो नहीं रहेगी संसार की। भगवान के पास जाने वाले के लिए कोई इच्छा नहीं रहती है। भारत संस्कृति बड़ी विलक्षण है, भारत संस्कृति बहुत विलक्षण है। त्याग और वैराग की शिक्षा उसके दिनचर्या में है। भारत संस्कृति का पुरुष क्या पहनता है वस्त्र? धोती। धोती में जेब होता है। और माता लोग क्या पहन रही है? साड़ी। इसमें जेब होता है? नहीं होता ना। दोनों में जेब नहीं है। और ब्राह्मण जो भगवान की पूजा करने के लिए मंदिर में जाते हैं, वो भी एक ओत्री ऊपर कपड़ा, एक नीचे कपड़ा पहनते हैं, उसमें भी कुछ जेब वेब नहीं होता है। इसके पीछे रहस्य क्या है? कोई भी संसार की चीज आपके साथ नहीं जाएगी, इसलिए हमारी संस्कृति में वस्त्र भी ऐसे रखे हैं कि आपको पहले दिन से त्याग सिखाएं। जाने वाला इस संसार से, हमारा संबंधी कोई दुनिया से जाता है, तो उसको अंतिम वस्त्र पहनाते हैं, उसमें भी जेब नहीं होता। मालूम है ना, कफन में जेब नहीं हुआ करता। इसलिए ठीक तरह से हमारी संस्कृति को समझिए। एक वस्त्र धोती इस दुनिया में हमको ऐसे रखती है, अपने को ढक के तो रखती है, लेकिन भगवान को भूलने कभी नहीं देती कि कुछ साथ नहीं रहेगा। ये संस्कृति ऐसी है, इस संस्कृति में जन्म लेने वाला बड़ा महाभाग्यशाली है। तो कई जन्मों के पुण्यों का फल जब इकट्ठा होता है, तब भारत में किसी का जन्म होता है। और भारत में जन्म होने के बाद भी ऐसे बैठ के हरि कथा भागवत सुनना, भगवान के नाम का उच्चारण करना बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है। मानव जन्म भी दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है मानव जन्म। कई जन्मों के जब पुण्य का फल इकट्ठा होता है, तब मानव जन्म मिलता है। भजहुरे मन श्री नंद नंदन अभय चरणारविंद रे, दुर्लभ मानव जन्म सत्संग। मानव जन्म बहुत दुर्लभ है, भय उसमें सत्संग उससे भी ज्यादा दुर्लभ है। तो इस दुर्लभ सत्संग को प्राप्त करने के लिए मानव जन्म में अति सुंदर श्रीमद् भागवत का निरूपण करते हुए व्यास देव जी लिखते हैं कि मैं भागवत अब ऐसी लिखने जा रहा हूं, कैसी है ये? इसके अंदर कोई भी कैतव धर्म नहीं रखा है मैंने। धर्म प्रोजित कैतव निर्मत्सराणाम सताम। समस्या क्या थी व्यास देव जी की? कलयुग को उन्होंने देखा कलयुग आ रहा है, कलयुग के अंदर लोगों की बुद्धि बहुत कम हो जाएगी। पहले तो क्या होगा, मंद, बहुत मंद हो जाएंगे, सुस्त हो जाएंगे, आलसी हो जाएंगे, टाइम नहीं मिलेगा, कथा हो रही है नहीं, काम है अभी नहीं, आ जाएंगे आखिरी दिन, एक दिन भाग्यशाली हो, एक दिन क्या एक मिनट में आओ तो भी आपको लाभ होएगा ही, नहीं आ सकते हैं। तो मंद सुमंद मत्यो, मंद मति भी मंद, बुद्धि भी नहीं होगी, कोई बात नहीं, बुद्धि नहीं हो भाग अच्छा बोला, भाग भी अच्छा नहीं होगा, पर भाग अच्छा नहीं है, एक बैठा है तो एक जो बैठ भी नहीं सकेगा, इतना चंचल होगा, उद्वेग होता रहेगा हर समय। तो व्यास देव ने क्या किया, महाभारत को संकलन कर लिया कि महाभारत स्त्री शूदर वैश्य द्वेज बंधु इन सबको महाभारत के द्वारा बीच में महाभारत के भगवद्गीता को रख दिया, भगवद्गीता महाभारत के मध्य में रख दिया, और इसलिए रख दिया कि इस भगवद्गीता से भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करना सहज हो जाएगी। लेकिन फिर भी महाभारत में इतनी और विशेष चीजें हैं कि भगवद्गीता महाभारत में कोई पढ़ने को तैयार नहीं है, समझ में आने वाली नहीं है, और ये व्यासदेव की समस्या थी। और तब गुरुदेव आके नारद जी ने कहा, व्यासदेव पहले ही लोग संसार के अंदर इंद्र तृप्ति के पीछे भाग रहे हैं, लोग पहले ही संसार में दिन सुबह से शाम तक केवल भोग के पीछे भाग रहे हैं, और आपने वेदों के अंदर स्वर्ग के भोग की इतनी ज्यादा प्रशंसा की है कि दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा दो बड़े मजहब हैं वो केवल स्वर्ग में ही तो जाना चाहते हैं। आपने देखा है दुनिया के अंदर सबसे बड़ा मजहब ईसाई, और उनकी लक्ष्य उनका क्या है, स्वर्ग की प्राप्ति, हम सब हेवन में जाएंगे। मोहम्मद दिन दूसरा सबसे बड़ा मजहब, लक्ष्य क्या है, जन्नत में जाएंगे, स्वर्ग में जाएंगे, और प्राय भारत के सारे लोग स्वर्गवासी अपने आप को कहने में हम स्वर्ग में जाएंगे। लेकिन स्वर्ग लक्ष्य नहीं है, भागवत में स्वर्ग का लक्ष्य नहीं है, इसे बहुत ऊपर की बात है, बहुत ऊपर की बात है। तो इसलिए ये जो बाकी चीजें हैं, जो स्वर्ग आदि लुभावने वाले जो भगवान से भटका देते हैं हमको, एक बार कहीं भगवान ने को किसी ने जाके कहा कि कृपा करके ये भक्त बहुत प्रेम करते हैं, इनको आप दर्शन दे दीजिए। बोला ठीक है, आप जहां बोले वहां आके मैं बैठता हूं। बोला पुरुषोत्तम वाटिका में आके बैठ जाओ, कौन टाइम से मिलेंगे, कौन से टाइम से आपको मिलने आए। मानो भगवान ने बोला मैं आपको शाम को 5 से 6 बजे तक मिलूंगा, कोई बात नहीं, ढंढोरा पीट दो पूरे जगन्नाथपुरी में कि भगवान जगन्नाथ जी आज यहां बैठ के सबसे मिलेंगे। अब भगवान ने क्या खेल किया, वो पुरुषोत्तम वाटिका के आगे 5-6 जगहों पे ऐसा सुंदर वातावरण कर दिया, लोगों को तो पता लग गया, सब भागने लगे, जाओ जाओ भगवान से मिलेंगे। और पहले पहले आते हुए एक जगह देखें तो एक बहुत बड़ा सुंदर चमकीला व्यवस्थित मंडप बना हुआ है, कहा आइए आइए खाइए खाइए, किसी से कुछ नहीं लिया जाएगा। और अंदर ऐसा सुंदर घी के अंदर आलू की टिक्कियां तली जा रही है, खुशबू आए तो थोड़ी देर के लिए आदमी खड़ा हो जाए। वो तो भाई मुफ्त का है तो खाने लो, खा लिया। किसी ने कहा नहीं नहीं जल्दी करो, टाइम हो रहा है, जाना है। थोड़ा आगे और चलते हैं, एक सुंदर सजे हुए भवन के अंदर सुंदर राग आलापा जा रहा है, आइए आइए सुनिए, यहां तो इस देश की सबसे बड़ा अभिनेता अभिनेत्री और गायक आज गाने आए, और मुफ्त में सब अंदर आ सकते हैं। और सब अंदर घुस गए और इतना मौज में गाने में लग गए, 10-15 मिनट बाकी बचा, जल्दी चलो भगवान से मिलना है। आगे आके देखते हैं तो शेर खड़ा है, वाटिका के दरवाजे के ऊपर शेर खड़ा है। अब पहले कहीं आते तो कोई दूसरा रास्ता ढूंढ के निकालते, तब तक तो कहा कि भाई टाइम खत्म हो गया, भगवान अभी तो नहीं मिल सकते हो। हमारी स्थिति यह है कि भगवान का मिलना शास्त्र में इतना सरल बता दिया है कि एक बार भगवान का नाम उच्चारण कर लो तो भगवान जीभा के ऊपर आके नाचना शुरू करते हैं। लेकिन हम संसार के इतनी चीजों में ऐसे फंस जाते हैं कि भगवान बाद में देख लेंगे, टाइम मिलेगा तब देख लेंगे, छुट्टी होगी तब देख लेंगे। ये सब चीजें भगवत प्राप्ति के लिए ऐसा विचार करना उचित नहीं है। जीवन में पहला लक्ष्य भगवत प्राप्ति का होना चाहिए, तभी मानव जीवन सफल है। तो कहते हैं ये क्या है भागवत में, वस्तु क्या है, शिवदम, जो सबकी कल्याणकारी वस्तु है वो भागवत के अंदर है। कल्याणकारी वस्तु भागवत के अंदर रखी है, और किसने रखी है, महामुनि कृते, व्यासदेव स्वयं मुनि ने सब शास्त्रों के अंदर से ढूंढ के और मुख्य वस्तु को रख दिया है। तभी पूछ लिया एक बार नारद जी ने कि जब शास्त्रों में से निकाल के रखा है ना, तो शास्त्र तो पहले ही हमारे पास पड़े हैं, तब संत आदि कुमार कहते हैं, हाँ आप ठीक कहते हैं, पेड़ के अंदर, आम के पेड़ में आम का रस जड़ से लेकर और ऊपर पत्ते तक होता है, लेकिन पीना होगा रस तो केवल जब आम पकेगा तभी मीठा मिलेगा। गन्ने पूरे में रस होता है ऊपर से नीचे तक, लेकिन उसमें से रस निकाल के जब चीनी बनाई जाएगी तब उसकी मिठास आएगी। ये सत्य है कि नहीं है? ठीक ऐसे व्यास देव ने सारे शास्त्रों के, वेदों के अंदर से निगम कल पत्रो गलितम फलम, निगम कहते हैं वेद को, और निगम कहते हैं जहां आपकी इंद्रियां नहीं पहुंच पाए, जहां आपके प्रयास से आप नहीं पहुंच पाओ। जैसे ये खजूर का पेड़ है, नारियल का पेड़ है, आप लोग चढ़ सकते हो? सब लोग, आप में से एक भी नहीं चढ़ जाएगा, ऊपर देखोगे तो भी चढ़ोगे, चढ़ तो नहीं पाओगे ना। अब उसको कोई उतार के अच्छी तरह से, ऐसे डंडा मार के भी नहीं उतारे, पत्थर मार के भी नहीं उतारे, लेकिन एक दूसरे को दे, दूसरा तीसरे को दे, और फिर वो नीचे फल आपके हाथ में आए, इसको बोलते हैं गलितम फलम। गलितम फलम सारे वेदों का सार रूपी फल, सारे वेदों में से, जैसे पूरे पेड़ के रस को, दूध कहां होता है? गाय में, गाय के अंदर दूध होता है ना, तो कहीं से चाकू से काटेंगे तो दूध निकल गया गाय से, स्तन के अंदर से दूध निकलेगा, दूध तो गाय के अंदर ही है ना, बाहर तो नहीं है कहीं। ठीक रस पूरे पेड़ में है, लेकिन जब आम पकेगा तभी रस मिलेगा। लेकिन एक कैसा रस कैसा है, भागवत का रस कैसा है, इसका फल क्या है? तापत्रय उन्मूलनम, तापत्रय उन्मूलनम। तापत्रय क्या है? संसार के अंदर सबको दुख भोगने पड़ रहे हैं, कौन से? आदि भौतिक, आदि देविक, आध्यात्मिक, एक शरीर से उत्पन्न होने वाले कष्ट, बीमारी है, मानसिक चिंता है, ये तो सबको होती है। संसार में कोई नहीं है कह सकता है कि मेरे को शरीर का रोग नहीं है। दूसरे प्राणी दुख देते हैं सबको, और नहीं तो मच्छर सबको काटता है, ये भी सबसे बड़ा दुख है। और दुनिया में दूसरे आदमी इतना दुख नहीं देते हैं जितने अपने सगे देते हैं, इसका भी ध्यान रखना। हमको सबसे ज्यादा दुख इस दुनिया में किसी और से मिला है तो अपने सगों से मिला है, दूसरों से नहीं मिला है। सगे संबंधी ज्यादा दुख देते हैं, ये दूसरे प्राणी दुख देते हैं, और आदि देविक प्रकृति का कोप होता है, कभी भूखा, कभी भूकंप आ जाता है, कभी सुनामी आती है, कभी अकाल हो जाता है, ये इसमें तो कोई नहीं बच सकता है। कभी कभी लड़ाइयां हो जाती है, युद्ध हो जाते हैं, आतंक हो जाता है, ये कहां से आया है? ये प्रकृति का कोप है। ये तीन प्रकार के दुख है, इसको बोले ताप त्रिय उन्मूलनम, जड़ से निकाल के ये भागवत ऐसे बाहर फेंक देती है कि ये ताप उसको छुएंगे नहीं। अरे जिसने भागवत के पास बैठ गया, एक शब्द को भी जीवन में संभल समझ गया, तो कलयुग उसके दरवाजे के अंदर आने की हिम्मत भी नहीं कर पाएगा, ताप त्रिय बाहर खड़े रहेंगे। तो ऐसा भागवत है ये महात्म्य कि ये सब। और एक विशेष शब्द लिखा है, शुश्रुता तत्क्षणात अवरुद्यते। आपने अपने घर में यह संकल्प किया, हम भागवत सुनने जा रहे हैं, और भगवान एकदम आके हृदय के अंदर चुपके बैठ जाएंगे, काबू हो जाएंगे। अवरुद्यते, अवरुद्यते का किसको कहते हैं? ये रोड के ऊपर आपने स्पीड ब्रेकर देखे, इसको क्या बोलते हैं? गति अवरोधक। आपने भगवान की कथा सुनने का मन में संकल्प किया, भगवान एकदम हृदय के अंदर ऐसे सचेत होकर बैठ जाएंगे, मेरी कथा सुनने जा रहा है। भगवान अंदर हृदय में अवरुद्ध हो जाते हैं। आपको नहीं समझ में आए तो आसानी से समझो, आप कहीं किसी गली से जा रहे हो और ऊपर से आवाज आए, कोई आपका नाम लेके कहे, भारतीय जी की वाटिका में कथा ही कथा होती है। भारतीय जी ऐसे ऊपर देखेंगे, कौन है ये कह रहा है? मन इतना बड़ा खुश हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो जब भगवान देखते हैं कि मेरा भक्त मेरी कथा सुनने जा रहा है, तो भगवान बड़े आनंदित होते हैं और उस भक्त के हृदय में बैठते हैं, और ये मेरी कथा सुनने जाता है। तत्क्षणात, उसी समय, ऐसे नहीं बाद में, मरने के बाद भगवान मिलेंगे। ये जो भागवत धर्म है ये मरने के बाद का नहीं है, अभी इसी वक्त यहां का है, जहां है वहां प्राप्त होगा, मरने के बाद मिलेगा, ये भागवत धर्म की परिभाषा नहीं है। और किसको मिलेगा? कोई भी हो, पापी हो, तापी हो, सबके लिए दरवाजा भगवान ने खुला रखा है। और वो धर्म ही कैसा? जो दुखी को, दीन को, पापी को, अपराधी को जगह नहीं दे, तो वो धर्म कैसे हो सकता है? ये तो ऐसा धर्म है, कोई भी हो। भगवत गीता में तो भगवान ने यहां से यहां तक कह दिया, अपिचेत से दुराचार हो, अरे दुराचारियों में 1000 दुराचारी इकट्ठे करो, बुरे आदमी इकट्ठे करो, उनमें से 3 चुन लो, उनमें से जो एक बड़े से बड़ा दुराचारी हो, अगर मेरी भक्ति करने लगता है, भागवत की कथा में आके बैठता है या मुख से हरे कृष्ण बोल देता है, तो समझ लो कि वो साधु है। साधु है वह मंतव्य, उसको साधु मान लो। ये आपको हमको बड़ा एक उम्मीद है, आशा है, आश्वासन है कि जीवन में कई जाने अनजाने में अपराध हो जाते हैं, पाप हो जाते हैं, उनको हमको पता नहीं है, लेकिन एक बार जैसे कथा में बैठते हैं भगवान की, जैसे भगवान के कीर्तन में बैठते हैं, एकदम सब साफ हो जाता है। कैसे हो जाता है साफ? एक आदमी चलते हुए गली में गटर खुला हुआ था, गिर पड़ा, तो गटर से अंदर से एक आदमी जो बाहर निकले, उसके अंदर कितनी दुर्गंध आती होगी, सबने बोला बहुत गंदा है, बहुत गंदा है, दूर हो जाओ। वो चलते हुए नलके के नीचे बैठ गया, सबने कहा गंदा, बोला हाँ, लेकिन बैठा तो नलके नीचे हो ना, अब धुलाई हो रही है ना, अभी तो साफ हो जाऊंगा, नहीं हो जाऊंगा। तो एक बार संसार में कितना भी कई जन्मों से अपराध पाप करता हुआ कोई आए, पाप योनि का मतलब कई जन्मों का पुराना पापी हो, लेकिन एक बार भगवत कथा की इस अमृतमयी गंगा के नीचे बैठ जाता है ना, भगवान कहते हैं साधु एवं, उसको साधु मान लो। साधु का मतलब बड़ा संत मान लो। अर्जुन तो ऐसे पूछ रहा है, वो साधु कब होगा, कितना टाइम लगेगा? और भगवान कहते हैं क्षिप्रम भवती धर्मात्मा, एक क्षण में साधु हो जाएगा, एक मिनट भी नहीं लगेगा। महाराज ये तो अपराधी करीब 50 साल से, अरे 50 साल से दरवाजा बंद करके कमरे का जाओ, अंदर अंधेरा हो और आप आते ही बटन को दबा दो या दिया सलाई जला दो माचिस, तो क्या अंधकार कहेगा कि मैं 25 साल से यहां रह रहा हूं, मैं बाहर नहीं जाऊंगा? बोलेगा क्या? बटन दबा दिया, लाइट आएगी कि नहीं आएगी? हरे कृष्णा। बटन दबाने से वो ना माला पिराई के ना, हमारे यहाँ पूरी मंदिर के अध्यक्ष गौर नेता प्रभु पधारे हैं, उनका स्वागत है। हरे कृष्ण। बोलिए हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे रामा, हरे रामा, राम राम, हरे हरे। तो देखिए कितना सुंदर भगवान ने व्यवस्था की है। क्या कुछ हो गया इस जन्म में या कई जन्मों में पाप ताप हो गए, चिंता मत करो। एक बार इस कल्प वृक्ष भागवत के नीचे बैठ जाओ, इस भगवान के नाम चिंतामणि के नीचे बैठ जाओ, जवान से नाम लेना शुरू कर दो गोविंद का, एकदम धुल के साफ हो जाएगा। चेतन महाप्रभु ने कितना सुंदर कह दिया, चेतो दर्पण मार जन्म भव महादावा गनी निर्वा, कई जन्मों का मेल जमा हुआ है, चिंता मत करो। परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, अरे श्री कृष्ण नाम संकीर्तन की जय हो, अनादिकाल से हृदय के ऊपर जमे हुए मेल को धो के साफ कर देता। तो कृष्ण कथा हृदय के ऊपर अनादिकाल से जमे हुए मेल को साफ कर देती है। भगवान तो कहता है एकदम साधु बन जाएगा, अर्जुन फिर भी थोड़ी शंका करने लगा, तो भगवान को थोड़ा ऐसे, भगवान ऐसे देखा थोड़ा घूर के, बोला ऐसे सुन अर्जुन, मैं लोग कहेंगे बड़ा पापी था, बोला लोगों को छोड़ो, मैं कह रहा हूं, मेरी इस बात सुनो, तुम जाओ सबसे बड़ी शहर के अंदर बिल्डिंग है उसके ऊपर खड़े होकर डंडोरा पीटो पूरे शहर में, सब लोग जब इकट्ठे हो जाए ना, तब उनको कहना, क्या कहूं, प्रतिजाने कौन के नम भक्त प्रणश्यति, जाके तुम प्रतिज्ञा करो कृष्ण अर्जुन के, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मेरे भक्त को मैं कभी नाश होने नहीं दूंगा। अर्जुन ने कहा आप प्रतिज्ञा करो ना भगवान, मेरे को क्यों भेज रहे हो? भगवान ने मुस्कुरा के कहा अर्जुन इसी युद्ध के अंदर मैं अपनी प्रतिज्ञा तोड़ूंगा भीष्म के सामने, लेकिन भक्त का किए हुए वचन को मैं सदा रक्षा करता हूं, ये मेरा धर्म, भक्त के वचन की मैं रक्षा करता हूं। अर्जुन आपने कह दिया तो फिर मैं उसकी रक्षा करूंगा निश्चित रूप से। भक्ति की पूरी एजेंसी भगवान ने भक्तों को दे दी है, भगवान स्वयं भक्ति नहीं देते किसी को।
भक्ति भगवान नहीं देते हैं, भक्त भक्ति जन्म हैते भक्त संगे। भक्ति का जन्म कहाँ होता है? भक्तों के संग में, केवल भक्तों के संग में भक्ति का जन्म होता है, और कोई रास्ता नहीं है। महाप्रभु कहते हैं और कोई रास्ता नहीं। और भक्ति मिल जाए, भगवान आपके हृदय में बैठ जाए, फिर भी भक्त संग मुख्य अंग, फिर भी भक्तों का संग मुख्य अंग है। देख लीजिए यहां हम किस लिए आए हैं, भगवान के प्रेमी भक्त बनने के लिए आए हैं, हमारा उद्देश्य यहां ये। और एक बात सुन लो, भगवान के प्रेमी भक्त होने के बाद जैसे 1000 का नोट मिल जाए तो 2 रुपये 4 रुपये 5 रुपये की चीजें उसके अंदर अपने आप आ जाती, फिर छोटी इच्छाएं करने की आवश्यकता नहीं है, वो अपने आप सब पूरी हो जाएंगी। फिर हर एक अलग इच्छा करने की जरूरत नहीं है। इसलिए एक बुद्धिमता सीख लो आज, मांगना ही है तो भगवान को मांग लो, भगवान से मत मांगो, भगवान को मांग लो। एक बार भगवान को मांग लिया तो और कुछ मांगने की आवश्यकता कभी जीवन में रहेगी नहीं। एक छोटा दृष्टांत कभी समझाने के लिए देते हैं। राजा का जन्मदिन था, कहा जिस चीज को, जिस आदमी को जो चीज चाहिए उसके ऊपर हाथ रखे और ले जाए, जिसको गाय चाहिए गाय ले गया, हाथी चाहिए हाथी ले गया, सोना चाहिए सोना ले गया। एक माता बिचारी आई, बुढ़िया, बोला क्या हो रहा है? बोला हो क्या रहा है, महाराज का जन्मदिन है, जिसके ऊपर हाथ रखो वो चीज ले जाओ, खुला छूट है। मां कह रही है मैं राजा को देखना चाहती हूं, मुझे मिलाओ राजा से। मां क्या करोगी, जो चाहिए वो ले जाओ? बोला नहीं, राजा से मिलना है। राजा के पास ले गए, बोला क्या है महाराज? आज मेरा जन्मदिन है, जिसको जो चाहिए उसके ऊपर हाथ रखे और ले जाए। मैंने बोला सत्य बोलो, देखो ना सब ले जा रहे हैं। और मैया ने हाथ लंबा करके राजा के सर के ऊपर रख दिया। अब राजा राजमाता बन के ऐसे बैठ गई, अब पूरा राज उसका हो गया ना। अब काय के लिए हाथी घोड़ा गधा ले, अलग अलग सब कुछ एक बार मिल गया ना। तो भगवान को मांग लो। अर्जुन ने भगवान को मांगा था और दुर्योधन ने भगवान की सेना मांगी थी, परिणाम में अर्जुन का आज भी फोटो कृष्ण के साथ भगवद गीता के ऊपर मिलेगा। दुर्योधन का नाम लेते हुए लोग थुत्कारते हैं। तो भगवान को मांगने वाला इस संसार में विजयी होता है, भगवान से मांगने वाला कहीं ना कहीं रास्ते में भटक जाता है। इसलिए भगवान को मांग लो। तो भागवत कल्प वृक्ष है, भगवत नाम चिंतामणि है, लेकिन मांगने की बुद्धि आपको भगवान से प्राप्त करनी चाहिए। इसलिए हमारे शास्त्र कहते हैं भगवान हमको बुद्धि दीजिए, धीमहि मुझे बुद्धि दो। गायत्री मंत्र में क्या मांगते हैं? बुद्धि दीजिए। और भगवान बुद्धि सबको देते हैं, बुद्धि योग सबको नहीं देते हैं। बुद्धि सबको दी है कि अपनी रक्षा कैसे करें, दो टाइम का कमा के कैसे खाएं, लेकिन बुद्धि योग सबको नहीं दिया है। ददामी बुद्धि योगम, मैं उसको बुद्धि योग देता हूं। किसको? जो प्रेम से, जो प्रेम से मेरा भजन करता है। तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम, जो प्रेम से मेरा भजन करता उसको मैं बुद्धि योग देता हूं। बुद्धि योग का मतलब, बुद्धि योग का मतलब उसको ऐसी बुद्धि देता हूं जो मेरे को वरण कर लेती है। वरेण्यम शब्द, वरेण्यम किस, वर किसको कहते हैं? कन्या का वर होता है, लड़की लड़के को जाके वरण करती है। ऐसे मेरी बुद्धि भगवान को वरण करे, वरेण्यम। बुद्धि का काम क्या है? भगवान को वरण करना, संसार को नहीं वरण करे, भगवान को वरण कर ले और सब कुछ उसके अंदर आ जाएगा, कुछ नहीं बाकी रह जाएगा। लेकिन मांगना हमको आना चाहिए, ये बुद्धि हमको यहां से सीखनी चाहिए। एक बार नारद जी को एक भक्त मिल गया और नारद जी, कहां जा रहे हो? स्वर्ग जा रहा हूं। अच्छा, हमको भी ले चलो, चलो। और जब स्वर्ग में पहुंचे, नारद जी ने बोला मैं अंदर से मिल के आता हूं, ये कल्प वृक्ष है इसके नीचे तुम बैठ के आराम करो। बैठ गया और बैठ के कहा बहुत दूर चल के आया हूं, थक गया हूं, अच्छा सा पलंग होता तो लेट जाता। अरे कल्प वृक्ष था, एकदम पलंग निकल आया और पलंग भी सोने का सुंदर हीरे जड़त, देखा सो गया। और कहता पलंग तो आ गया, कोई पांव दबाने वाला होता, जरा मालिश कर दी होती तो थका हुआ था बड़ा आराम आता। इतनी देर में बहुत सी सड़क की अप्सरा आई और तेल लगा के मालिश करने चारों ओर से लगी। आप तो जो इच्छा करे वो आए। इतने में डर लगा अंदर कि मेरी पत्नी मेरे को ऐसे देख ले तो झाड़ू लेके आ जाएगी। डर लगा, और इतने में उसकी पत्नी झाड़ू लेके आई, वो कल्प वृक्ष तो था ना, अब झाड़ू लेके आई है, वहां से भागा। नारद ने कहा जा रहा है? बोला वो देखो झाड़ू ला रही है। बोला मूर्ख, कल्प वृक्ष नीचे बैठ के भगवान को क्यों नहीं मांग लिया, तेने फिर भी झाड़ू ही मांगा। तो यहां बैठ के ऐसी चीज मांग लो, ऐसी चीज मांग लो, फिर कभी मांगना न पड़े। और वो मांग लो गोविंद को, और वो इतना भोला भाला है आपके साथ, आपके घर चला जाएगा। और एक बार आ गया तो कभी वापस वहां से जाएगा नहीं, बड़ा टेढ़ा है, कहीं एक बार आता है तो वहां से वापस जाता ही नहीं, कहीं बोलो जाओ जाओ नहीं जाएगा। लेकिन एक बार ले जाके देखो इस भोले को, और भागवत के माध्यम से ये कृष्ण आपके साथ जाने को तैयार है, आप ले जाने को तैयार हो जाइए। तो ऐसे तीन श्लोकों में भागवत में भगवान श्री कृष्ण की आराधना परम सत्य के रूप में, तटस्थ लक्षण के रूप में भी भगवान की आराधना, फिर विषय वस्तु शिवदम है, कल्याणकारी है, महामुनि व्यास के द्वारा इसको रचा गया है, और एक बार इसको सुनने से भगवान हृदय में आके अवरुद्ध हो जाते हैं। ये सारे शास्त्रों के, शास्त्र कैसा है, कल्प वृक्ष जैसा है, निगम कल्प, कल्प उधर भी कल्प वृक्ष है, तो उसका ये गलितम फलम है, फल तो बहुत सुंदर है, लेकिन और सुंदर कैसे बन गया, सुख मुखार, सुख, सुखदेव गोस्वामी उसको थोड़ा सा ऐसे चूंच लगाया ना तो फल और मीठा हो गया। कैसा मीठा हो गया, रसा, रसमय हो गया, छिलका भी नहीं है, गुडली भी नहीं है, केवल रसमय है, लेकिन गिरने से बिखरता नहीं है ये रस, क्योंकि बहुत प्रेमी भक्त इस रस को हृदय के अंदर बहुत प्रेम से संभाल के रखते हैं। तो ये रस भागवत रसा, रसा कब तक इस रस को पिए, कब तक पिए, पियो पियो पियो, जब तक पी सकते हो पियो, जब तक जान में जान है तब तक पीते रहो, जब तक जान में जान है तब तक पीते रहो। इसलिए भागवत में ही कहेगा नित्यम सेवया, नित्य भागवत का सेवन करना चाहिए, नित्य रोज प्रतिदिन, जैसे भोजन रोज करना जरूरी है शरीर के लिए, इसे आत्मा के लिए भागवत का प्रतिदिन पठन पाठन करना और भगवान का नाम जपना, यह आत्मा का भोजन है। शरीर को तीन टाइम भोजन चाहिए तो आत्मा को यह भोजन चाहिए, दोनों को साथ दे तो सुखी रहोगे। अब भागवत शुरू होती है। भग शब्द, भगवान में भग शब्द, उसका अर्थ है छे, जिसमें षड गुण संपन्न हो और नित्य उसमें निवास करते हो और असीम हो, उसके समान कुछ नहीं हो, उसको भगवान कहते हैं। यशस्य समग्रस्य, जिसमें यश हो, समग्र परम परिपूर्ण रूप से हो, सुंदरता हो, वैराग हो, ये सब जिसमें संपूर्ण रूप से हो, उसको भगवान कहते हैं। भगवान के लक्षण छे और ऋषियों के प्रश्न छे, छह प्रश्न पूछते हैं ऋषि, कहां नैमिषारण्य में, किससे, सूत गोस्वामी से। और प्रश्न पूछने से पहले प्रशंसा करते हैं, प्रशंसा करते कहते हैं आपने गुरुओं के चरणों में, एक गुरु शब्द नहीं लिखा हुआ है, एक गुरु नहीं लिखा है, बहुवचन में गुरु है, आप गुरुओं के चरणों में रहकर परम सत्य को श्रद्धा के साथ प्राप्त किया है, और सेवा करने से गुरु अपने हृदय में जो छुपी हुई चीज है वो भी शिष्य को दे देता है। आप बताइए सारे शास्त्रों का सार क्या है, कल युग ऐसा आ गया है लोगों को सब शास्त्र पढ़ने का समय नहीं है, आप सारे शास्त्रों का सार बता दीजिए, एक कोई कार्य सब लोगों के लिए करने को हो ऐसा बता दीजिए, ये बता दीजिए कि भगवान अवतार क्यों लेते हैं और कब लेते हैं, उनकी क्या लीलाएं होती हैं, और विशेष रूप से ये भगवान श्री कृष्ण वसुदेव और देवकी के यहाँ क्यों प्रकट हुए, और भगवान श्री कृष्ण के जाने के बाद धर्म ने किसका आश्रय लिया, ऐसे छह प्रश्न पूछ लिए ऋषियों ने। सूत गोस्वामी पहले प्रशंसा करता है कि आप ऋषि हैं, वेद के अंग के हिसाब से यहां बैठ के यज्ञ कर रहे हो, यज्ञ में शाम का जब टाइम मिलता है, अवकाश मिलता है, तब कथा सुनते हैं। एक थोड़ा ध्यान दीजिए, कथा सुनने वाले ऋषि हैं, सनक आदि ऋषि हैं, भृगुवंशी हैं, ब्राह्मण हैं, वेद ज्ञ हैं, यज्ञ कर रहे हैं, सुनाने वाला सूत है, उनसे थोड़ा छोटा है, केवल पुराण को ही बोल सकता है, वेद नहीं बोल सकता है, लेकिन फिर भी उद्देश्य क्या है ऋषियों का। बोला कलयुग के कारण हम दीर्घ काल तक यज्ञ का आयोजन करके बैठे हैं कि कलयुग का प्रभाव कम पड़े लोगों के ऊपर, लेकिन लगता है कि यज्ञ के धुएं से कालाश तो बढ़ती जा रही है, लेकिन हमको नहीं लगता कि कलयुग रोका जा सके। आप बताइए कोई साधन।
और सूत गोस्वामी ऋषियों को बड़ा आदर के साथ कहता है, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा, मैं आपको वही बताऊंगा जो मैं मेरे गुरुजी के पास सुन के आ रहा हूं। अच्छा, क्या सुन के आ रहे हैं? तब बताते हैं भगवान श्री कृष्ण के अपने धाम जाने के बाद 30 साल के बाद श्री कृष्ण इस धराधाम से वापस चले गए। 30 साल के बाद फागुन महीना नवमी का दिन परीक्षित महाराज को सुखदेव जी ने भागवत सुनाना शुरू की थी। मैं वहां बैठा था। सूत गोस्वामी कहता है मैं वहां बैठा था, मेरे गुरुजी ने मुझे बुलाया कि नजदीक बैठो, और मैं बड़े ध्यान से उस भागवत को सुना था, और मैंने देखा मेरे सामने केवल श्रवण से परीक्षित महाराज भगवत धाम की प्राप्ति कर गया, और मैं ये मेरी आंखों से देखा, और अब मैं वही भागवत आपको सुनाने जा रहा। ऐसा उन्होंने ऋषियों के प्रश्नों के उत्तर में भागवत को सुनाने का संकल्प किया। 200 साल के बाद भगवान श्री कृष्ण के जाने के बाद गोकर्ण ने धुंधकारी को भागवत सुनाई थी। उसके 30 साल बाद नारद को सनकादि कुमार ने भागवत सुनाई थी। ये भागवत का क्रम बताया हुआ है, ऐसे इस धरती के ऊपर भागवत का आविर्भाव हुआ है। तो ये पहले 3 अध्यायों में यज्ञ में लगे हुए ऋषि समय बचने के ऊपर भागवत सुनते हैं, कथा सुनते हैं पुराणों की। भगवत प्राप्ति होती है लेकिन विलंब से होती है। दूसरे 3 अध्यायों में श्रोता और वक्ता की बात कर रहे हैं। श्रोता कौन है? ऊंच कोटि के ब्राह्मण है, यज्ञ उनका मुख्य काम है, यज्ञ मुख्य काम कर रहे हैं, और श्रवण थोड़ा गौण है। गौण है का मतलब सेकेंडरी है। अब दूसरे श्रोता और वक्ता के ऊपर आइए। 3 अध्यायों में हम बात ये पहले कर रहे थे, पहले स्कंद में 19 अध्याय है, 19 चैप्टर्स, 3 सूत सनक आदि संवाद, 3 में नारद व्यास संवाद है। बताया है व्यास देव भगवान का अवतार है, शास्त्रों के एक वेद को 4 वेदों में विभाजित कर दिया, अपने 4 शिष्यों को जैमिनी पायल आदि को 4 वेद दे दिए, पुराण सब अपने शिष्य को दे दिए, सूत गोस्वामी को, रोमहर्षण को, और फिर भी कलयुग के प्रभाव को देखते हुए महाभारत को लिख दिया। एक दिन सुबह उठा सरस्वती नदी के तट के ऊपर बद्री का आश्रम में, जहां उनका आश्रम था, स्नान आदि करके ऐसे बैठा तो हृदय में खाली कुछ जगह दिखाई दी। चिंता होने लगी, मैंने इतना सारा कुछ बनाया है, अभी भी मैं संतुष्ट नहीं हूं, मेरी असंतुष्टि का कारण क्या है? ऐसे तो नहीं है कहीं कि मैंने भगवान की महिमा नहीं गाई? ऐसे सोच ही रहा था इतनी देर में देव ऋषि नारद वहां आके प्रकट हुए। गुरुदेव उस वक्त आता है, भगवान साधु संत को गुरु को उस वक्त भेजता है जब आपको पता लगता है कि मुझ में कुछ कमी है। जब तक हम समझते हैं कि हम परिपूर्ण है, तब भगवान पूर्ण मदम उसको आपकी जरूरत ही नहीं है। आप जब समझोगे कृपणता शरणागति का एक लक्षण है, कार्पण्य शरणागति का एक लक्षण, जब हम समझेंगे हम कुछ खाली हैं, हम संतुष्ट नहीं हैं, हम संसार में दुखी हैं, जब तक ऐसे अर्जुन को जब तक विषाद नहीं हुआ तब तक कृष्ण का प्रसाद नहीं मिला। भगवत गीता का प्रसाद अर्जुन को तब मिला जब विषाद हुआ, रोने लगा, अरे करंदन करने का ये रास्ता है, इसी जगन्नाथपुरी में यही महाप्रभु गंभीरा में रह के कृष्ण के ये समुद्र को देखते थे तो इस रंग को देख के कृष्ण याद आता था, वो पर्वत को देखते थे तो कटक पर्वत तो गोवर्धन दिखाई देता था उनको। ऐसे जो भाव में भावित होके के भगवान से बिछड़े को कई जन्म हो गए, ऐसा जब भाव होता है तो भगवान एकदम किसी न किसी साधु को भेज देता है। नारद आगे ऐसे खड़े हो गया, व्यासदेव उठ के खड़ा हो गया, गुरुजी आ गए, आसन दिया, सेवा किया, पाद दिया, चरणों में बैठ गया, और नारद जी पूछते हैं व्यास जी तुम संतुष्ट तो हो, क्या तुमने आत्मा को मन और शरीर के साथ एकता करा दी है? व्यासदेव कहता है गुरुजी मैंने सब शास्त्र लिखे लेकिन मैं आपको क्या बताऊं, आप तो हवा की तरह सबके हृदय में जा सकते हैं, प्रकाश की तरह,
जैसे प्रकाश सब जगह पहुंचता है ऐसे पहुंच सकते, आप मेरे हृदय में जाके जरा देखिए कहां मेरे से कुछ त्रुटि हो गई है, कहां गलती हो गई है।
और नारद जी कहता है, नारद जी कहते हैं आप पराशर पुत्र हो, आप साक्षात भगवान के अवतार हो, आप दिग्दर्शन, आपको आज नहीं भविष्य की सब चीजें दिखाई देती हैं।
अरे व्यास आप तो बड़ा अच्छा काम किया, महाभारत लिखिया, वेद लिखा है, लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूं शिष्य के नाते,
शिष्य को ताड़ना करने का गुरु को अधिकार है, बेटे को ताड़ना करने का पिता को अधिकार है, स्त्री को ताड़ना करने का पति को अधिकार है, जनता को ताड़ना करने का राजा को अधिकार है, सबको नहीं है। ये अधिकार दिया है शास्त्र ने। अब गुरु के स्थान के ऊपर खड़े होकर नारद जी कहते हैं व्यास इन सब शास्त्रों के अंदर इतना आपने इंद्रिय तृप्ति और भोग की बातें लिखी है स्वर्ग की कि लोग पहले से ही भोग के पीछे पड़े, भगवान को कैसे याद करेंगे, और आपने लिख दिया कि यज्ञ के अंदर पशु की बलि दे दो, अब तो उनको मांस खाना होगा, तो बोलेंगे व्यास देव ने कहा है हम इसलिए मांस खा रहे हैं, अब उनको रोकेगा कौन, कौन रोकेगा उनको। इसलिए लोग असली सत्य को ढूंढ नहीं पाएंगे शास्त्र में, इसलिए जाओ ध्यान में बैठो, भगवान की लीलाओं का ठीक तरह से वर्णन करो। जब तक लीलाओं का भगवान के वर्णन नहीं करोगे तब तक आप भी संतुष्ट नहीं होगा और लोक का कल्याण भी नहीं होगा। व्यासदेव को ये नारद का उपदेश मिला और नारद ने एकदम फिर अपने जीवन की कहानी बताई का भगवान की महिमा गाने के लिए और समझने के लिए सबसे मुख्य है साधु का संग। साधु संग सर्व शास्त्र कहे, लव मातर साधु संग सर्व सिद्धि होए। एक मिनट साधु का संग हो जाए तो कल्याण हो जाएगा। और नारद जी कहता है मैं व्यासदेव आपका आज गुरु हूं ना, मैं एक बहुत बड़ा गंधर्व था, उपभ्रंश नाम का गंधर्व था, बहुत सुंदर अप्सराओं के साथ घूमता था। एक बार संकीर्तन भगवान के नाम का हो रहा था देवताओं की सभा में, मैं भी कन्याओं को लेके साथ सुंदरियों को लेके वहां गाने के लिए गया और वो सब हरि के गुण गा रहे थे, गोविंद गोपाल गा रहे थे, और मैं वहां संसार के भोग और देवताओं की महिमा गा रहा था। देवताओं ने शराब दे दिया, जाओ सूदर बन जाओ, और मैं गंधर्व से गिर के एक गरीब सूदरानी के बेटे के रूप में यहां मेरा जन्म हुआ। पतन तो मेरा हो गया लेकिन मेरा भाग्य ऐसा था, 4 महीने बरसात के चतुर्मासे में कुछ भक्ति वेतांत साधु आके रहे थे, मेरी माँ उनकी सेवा करती थी, लकड़ी लाके देती थी, भोजन बना के देती थी। मैं बालक तो छोटा था, अर्भक था, बालक था, लेकिन शांत था, खेलने कूदने में मेरे को रुचि नहीं थी। मैं उनकी सेवा करता था, बर्तन उठा लेता था, और उनकी सेवा करते करते एक दिन वो प्रसाद ले रहे थे, मैंने उनसे मांग के उनका उचिष्ट खा लिया, साधु का उचिष्ट खा लिया, और उन्होंने मेरे को तत्व ध्यान का उपदेश दे दिया, तत्व ज्ञान दे दिया, भगवान की भक्ति दे दी। 4 महीने पूरे हुए, साधु जाने लगे, जाते हुए मेरे को आशीर्वाद दे के गए, सत्य सुखा के गए। उनके जाते ही मेरी माँ जो मुझसे बड़ा प्रेम करती थी, गाय से दूध निकालने के लिए जा रही थी, सर्प ने काट लिया, सांप से काटने से मेरी माता का देहांत हो गया। एक माँ मुझको संसार में बड़ी प्रेम प्रिय थी, भगवान ने उसको बुला लिया, मैंने समझा भगवान ने मुझे अपनी तरफ बुलाने के लिए रास्ता और अच्छा बना दिया है। भगवान का भक्त किसी भी दुर्घटना के ऊपर दुखी नहीं होता है, उसके अंदर सुख को ढूंढ लेता है। भगवान क्या करके सुखी होते हैं, भक्त को कैसे सुखी करते हैं, ये समझ में नहीं आएगा, हमको समझ में नहीं आएगा, साधुओं को केवल समझ में आते हैं। एक बार भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के साथ घूमते हुए किसी बुढ़िया के घर में गए, बड़ी माता जी कृष्ण भक्त थी, एक गाय थी, रोज दूध निकालती थी, भगवान को भोग लगाती थी, रबड़ी बनाती थी, मक्खन निकालती थी, कृष्ण को मक्खन खिलाया, रबड़ी खिलाई, अर्जुन से भी सेवा बहुत लगी। माँ ने कहा हमारे को आशीर्वाद दीजिए, भगवान ने कहा तथा अस्तु, बाहर निकला। अर्जुन ने पूछा क्या दिया इसको आशीर्वाद, भगवान कहता मैंने बोला इसकी गैया मर जाए इसकी गाय मर जाए। बोला ऐसे क्यों कर दिया, बोला इसके बाकी जीवन के थोड़े दिन बचे हैं, अब ये गाया की सेवा कर रही है अच्छा है, लेकिन फिर पूरा समय मेरा भजन करेगी, जल्दी मेरे पास आएगी, मैंने उसको मेरे पास जल्दी बुलाने का साधन कर दिया है। तो कब भगवान किसके ऊपर कैसे कृपा करते हैं, किसी का प्राण रख के कृपा करते हैं और किसी का प्राण लेके कृपा करते हैं, और करते सबका भला है, अनुग्रह सबके ऊपर करते हैं, हमको नहीं समझ में आता है। नारद जी कहते हैं अब मेरी माता भी नहीं रही, मैंने माता का तो अग्नि संस्कार कर दिया और मैं वहां से निकला, और निकला वनों से गुजरता हुआ, सरोवरों से गुजरता हुआ गहन वन के अंदर गया जहां सर्प खेल रहे थे, पशु चारों ओर से हिंसक घूम रहे थे, लेकिन मैं बेपरवाह जा रहा था, थक गया था, एक सरोवर में नहाया, वट वृक्ष के नीचे बैठा, और मैं से मेरे को जैसे मेरे साधुओं ने सिखाया था ऐसे मैं ध्यान करने बैठ गया। जैसे मैं ध्यान करने बैठ गया मेरे हृदय में भगवान साक्षात प्रकट हो गए, मैं आनंद में विभोर हो गया, और मेरा आनंद जैसे बढ़ने लगा अंदर से भगवान एकदम चुप गए, भगवान चुप गए, मैं छटपटा के उठा, कहां गए कहां गए, लेकिन कहीं दिखाई नहीं दिया, मैं बड़ा दुखी हुआ। आकाशवाणी हुई, नारद अब पक्व, अभी तुम कच्चे हो, कश्मलाय, अभी तुम में थोड़ा सा संसार का कचरा है, अभी तुम्हारे को दर्शन नहीं होंगे, तुम अपने साधन को जारी रखो। और नारद जी कहते हैं उसके बाद मैं उसी को ढूंढता रहा। तब व्यासदेव कहते हैं फिर क्या हुआ गुरुजी, फिर क्या हुआ? नारद कह रहे हैं फिर जिस दिन मुझे ये शरीर छोड़ना पड़ा उस वक्त मुझे ये दिव्य शरीर मिला जिसमें तुम्हारे सामने मैं खड़ा हूं, भगवान ने मुझे ये दिव्य शरीर दिया जिसमें जब चाहूं तो मैं वैकुंठ में जाके नारायण से मिल सकता हूं, जब चाहूं संसार में कहीं भी जा सकता हूं। भगवान की भक्ति करने के लिए कितने छोटे स्तर से भी की जाती है, दासी पुत्र में मेरे को साधुओं के संग से ये भक्ति मिल गई, दासी पुत्र होते हुए नीच होते हुए भी भक्ति करने में मुझे कहीं बाधा नहीं पड़ी। तो भक्ति में कहीं से भी हम जीवन में उठ सकते हैं, जहां खड़े हो वहां से भक्ति शुरू की जा सकती है। भक्ति के लिए कोई अधिकार का निरूपण शास्त्र नहीं करते हैं। भक्ति कैसे है, जैसे राजा की सेवा सब कर सकते हैं, झाड़ू निकालने वाला भी तो देश की सेवा कर रहा है ना, ऐसे भक्ति भगवान की कोई भी कर सकता है। अब यहां बहुत सुंदर श्लोकों में वर्णन किया हुआ है, श्रुणवताम स्व कथा कृष्ण, जीवन में कुछ सुनना चाहिए तो कथा श्री कृष्ण स्वयं ने जो कही है वो सुनना चाहिए। कौन सी कथा? नीच होते हुए भी भक्ति करने में मुझे कहीं बाधा नहीं पड़ी। तो भक्ति में कहीं से भी हम जीवन में उठ सकते हैं, जहां खड़े हो वहां से भक्ति शुरू की जा सकती है। भक्ति के लिए कोई अधिकार का निरूपण शास्त्र नहीं करते हैं। भक्ति कैसे है, जैसे राजा की सेवा सब कर सकते हैं, झाड़ू निकालने वाला भी तो देश की सेवा कर रहा है ना, ऐसे भक्ति भगवान की कोई भी कर सकता है। अब यहां बहुत सुंदर श्लोक में वर्णन किया हुआ है, श्रुणवताम स्व कथा कृष्ण, जीवन में कुछ सुनना चाहिए तो कथा श्री कृष्ण स्वयं ने जो कही है वो सुनना चाहिए। कौन सी कथा कृष्ण ने कही है? भगवद गीता भगवान श्री कृष्ण ने कही है, उसको सुनना चाहिए, भागवत को सुनना चाहिए। लाभ क्या होगा? पुण्य श्रवण कीर्तन, ये श्रवण और कीर्तन पुण्य है। हृदय में बैठे हुए भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं, तो जब प्रसन्न होते हैं तो क्या करते हैं? अभद्राणी धुनोती, सारे अभद्र, सारे जो अंदर कचरा पड़ा है धुनोती धो लेते हैं। सुहृद सताम, अपने भक्तों के सारे मैल धो देते हैं। और फिर क्या होता है? रोज ऐसे भागवत का, अगर हमने इस श्लोक आपको पढ़ाया था, नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया, प्राय सारे अभद्र सारे पाप ताप संताप नाश हो जाते हैं। कब? जब नित्य भागवत की सेवा की जाती है। एक भागवत ग्रंथ है, एक भागवत पुरुष है। भागवत पुरुष के संग में भागवत ग्रंथ का सेवन करना भगवान को प्राप्त करने का बहुत सरल तरीका है। उदाहरण कैसा है? उदाहरण क्या है? राजा को प्रसन्न करना बहुत मुश्किल है, लेकिन राजा के बच्चे को टॉफी और खिलौना देके खुश कर सकते हो, और राजा अपने बेटे को खुश देख के खुश हो जाएगा। ऐसे भगवान को, भक्त को खुश करना बहुत आसान है। भगवान को तो क्या चाहिए? आप क्या दोगे भगवान को? क्या भगवान के पास कोई चीज की कमी है कि आपके देने से वो संतुष्ट हो जाएगा? वो तो आत्मा राम है, आपत काम है, उसको कुछ नहीं चाहिए। लेकिन भगवान के भक्त को आपने कह दिया कि आप हमारे यहां बैठ के थोड़ी देर कथा करो, भगवान बोला मेरे भक्त की सेवा कर रहा है, हाँ ठीक है, ये मेरा भक्त है, भगवान उसमें बहुत प्रसन्न होते हैं। तो भगवान के भक्त के द्वारा भगवान को प्राप्त करना बहुत आसान है, बहुत सरल है, ये शास्त्र का सिद्धांत है। भगवान को प्राप्त करने के लिए भगवान के भक्तों का संग अति आवश्यक है। इस दुनिया में सबसे दुर्लभ चीज है भगवान के प्रेमी भक्तों का संग। ये महाप्रभु के शब्द हैं। भक्तों का संग इस संसार में मिलना बहुत मुश्किल है दुनिया में। भाग्य से भगवान की कथा सुनने में भक्तों का संग मिलता है। ये आप सब जो यहाँ बैठे हैं भगवान के भक्त हैं, भगवान की कथा में आपको संग मिला है, इसका आप लाभ लीजिए। अब यहाँ नारद व्यास देव को भागवत का चतुर्श्लोकी का उपदेश तो दे रहा है, लेकिन व्यास को लोक कल्याण की चिंता है। बहुत देर समाधि में बैठने के बाद बद्री का आश्रम में जहाँ व्यासदेव का स्थान है वहाँ उनके हृदय में भागवत स्फुरित होने लगी। भागवत के भगवान श्री कृष्ण के सारे चरित्र ऐसे चलने लगे जैसे आप टेलीविजन के ऊपर बैठ के और कोई सीरियल देखते हो, कोई प्रोग्राम देखते हो, जैसे टेलीविजन में आपको प्रोग्राम दिखता है, ऐसे व्यासदेव को हृदय के टेलीविजन के ऊपर, हृदय के दूरदर्शन के ऊपर कृष्ण लीला का पूरा रील चलने लगा। और ऐसे लिखा है, भगवान जब किसी के ऊपर कृपा करते हैं अहितु की, तो उसके हृदय की टेलीविजन के ऊपर, हृदय के दूरदर्शन के ऊपर अपने आप को प्रकाशित कर देते हैं। हम कहें कि हम कब हमारे भगवान अंदर आके जाओ, हमारे प्रयास से नहीं, भगवान की कृपा से। जैसे कोई सूर्य को थोड़ी कहेगा कि जब चाहो तब उग जाओ, जब उसका टाइम होगा तब उगेगा। ऐसे भगवान की जब इच्छा होगी, जब अहितु की कृपा, तो भक्त के हृदय में अपने आप प्रकट हो जाता है। आपको इसमें कुछ संदेह लग रहा है? वो दूसरी बात है, हमारे हृदय में अभी ऐसे प्रकट नहीं हुई है टेलीविजन, लेकिन होती है। आपको बताएं किसके हृदय में कौन सी एक बार टेलीविजन ऐसे भगवान दिख रहे थे, बताएं उसकी कथा आपको। बोलिए हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे। और ये जो आप जप रहे हो ना अभी, इसके अंदर भगवान की सारी लीला समाई हुई है। कैसे? जैसे छोटे बीज के अंदर पूरा पेड़ समाया होता है, इन ए सीड होल ट्री इज कंटेन, एक छोटे बीज में पूरा पेड़ होता है ना, इस नाम के अंदर सारी गोविंद की लीला अच्छी तरह से पैक की हुई है। लेकिन खुलेगी कब? जब हृदय साफ हो जाएगा तो अपने आप ये रील चलेगी। यही मंत्र जपते हुए ध्यान में बैठे हुए वृंदावन में महाप्रभु के परिकर साक्षात शिष्य महाप्रभु के मन को जानने वाले रूप गोस्वामी बैठे हैं, इसी नाम सुमरण में बैठे हैं, बहुत आनंद में बैठे हैं, और अचानक उसके चेहरे के ऊपर थोड़ी सी मुस्कुराहट, क्या हंसी आ गई, आंखें बंद है हंसी आ गई। उस वक्त एक लंगड़ा सा साधु वहां से, पांव भी टेढ़ा था और चलता भी टेढ़ से गुजरा, उसने दिल में कहा मेरे ऊपर हंस दिया, इतना बड़ा महात्मा है, मेरे शरीर को टेढ़ा देख के हंसता है। उसके मन में थोड़ा सा उस संत के लिए दुख हुआ और रूप गोस्वामी के अंदर से टेलीविजन बंद हो गया। किसी भक्त को कभी दुख दोगे तो भगवान हृदय से भाग जाएंगे। वैष्णव अपराध मतवाले हाथी की तरह है, भक्ति की लता को उखाड़ के फेंक देता है। इसलिए साधुओं के प्रति सद्भावना होनी चाहिए, अपराध नहीं करना चाहिए। यहां तो अपराध किया नहीं, लेकिन मान लिया उसने अपराध। रूप गोस्वामी अपने बड़े भाई सनातन गोस्वामी के पास जाके कहते हैं, भाई साहब महाराज बड़ा आनंद था नाम स्मरण में, हृदय में ठाकुर जी स्फुरित हो रहे थे, लेकिन अब कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। सनातन गोस्वामी कहते हैं, रूप किसी का अपमान तो नहीं किया है, किसी को दुख तो नहीं दिया? बोला नहीं, मैंने तो नहीं दिया है। बोला कोई बात नहीं, ब्रज में जितने रहते हैं सबको भंडारा खिलाओ, सबको भोजन के लिए बुलाओ, जो नाराज होगा तो नहीं आएगा, पता लग जाएगा कौन नाराज है। भोजन का प्रबंध किया, सबको पत्र चिट्ठी भेजी, सब खाने आए, वो जो लंगड़ा था वो नहीं साधु आया, पता लग गया ये क्यों नहीं आया। रूप गोस्वामी ने जाके उसको प्रणाम किया, बोला आप प्रसाद लेने नहीं आए? बोला आपके पास प्रसाद लेने आएंगे आप? उस दिन मैं वहां से जा रहा था, मेरे को देख के हंस रहे थे। रूप गोस्वामी गया था, मैं हंसा था? कब हंसा था? उस दिन फलाने टाइम आप जा रहे थे, अब रूस बुआ गोस्वामी कहते हैं, महाराज माफ करना, ये मेरे अंदर की बात है, मेरी और भगवान की और गुरु कृपा की बात है, लेकिन अब आप असंतुष्ट है इसलिए आपको बताता हूं, मैंने आपको देखा भी नहीं था। मैं क्यों हंसा था, कारण पूछते हो तो मैं बताता हूं आपको। आप संत हो, संतों के बीच में रहस्य की बात की जा सकती है। उस वक्त ध्यान में मैं बैठा था, देख रहा था राधा कृष्ण सामने से घूमते हुए किसी पेड़ के नीचे से गुजर रहे हैं। राधा रानी के मन में विचार आया कि ऊपर से वो सुंदर सा फूल मेरे को कृष्ण उतार के दे। भगवान श्री कृष्ण ने एक हाथ से डाली को नीचे किया और डाली को नीचे किया, राजा रानी ने दूसरे हाथ से डाली को पकड़ा और फूल को तोड़ने के लिए राजा रानी ने दूसरा हाथ डाला, श्री कृष्ण ने हाथ छोड़ दिया, डाली ऊपर चली गई और राजा रानी लटक गई। मैंने ये देखा इसलिए मेरे को अचानक हंसी आ गई। अरे वो बड़ा चरणों में गिर गया, बोला महाराज मैं गलत समझा, मेरे को गलत फहमी हो गई थी। तो हृदय के अंदर भगवान की लीलाएं स्फुरित होने लगती है इसी नाम से, जो नाम है इसमें सब कुछ है। एकदम भागवतम नाम पुराणम, उसमें नाम शब्द है साथ में, ये नाम में सब कुछ समाया हुआ है। तो ऐसे इन 6 अध्यायों के बाद परीक्षित कैसा श्रोता है, सुनने वालों में भक्ति के पहले अंग में श्रवण में परीक्षित प्रमाण है, जिसने केवल 7 दिन में भगवान को प्राप्त किया केवल श्रवण के द्वारा। तो आइए परीक्षित की श्रोता के रूप में क्या उसकी योग्यता है उसको देखें। 7वें अध्याय में प्रवेश करेंगे तो परीक्षित की माता का पहले दर्शन होगा। परीक्षित की माता उत्तरा है, थोड़ी देर आइए उत्तरा का दर्शन करते हैं। हस्तनापुर है, भगवान श्री कृष्ण महाभारत युद्ध समाप्त होने के बाद कुछ समय तक रुके हैं, आज जाने की तैयारी कर रहे हैं, रथ के ऊपर चढ़ के खड़े हैं, सब विदाई की तैयारी कर रहे हैं। उत्तरा सफेद साड़ी में विधवा है, भागती हुई आ रही है, कृष्ण को जाते हुए देखते, कृष्ण कृष्ण महायोगिन पाई माम, हे कृष्ण हे महायोगी मेरी रक्षा करो। सब कहते हैं ये तो अपशगन है, कहां जा रही है सफेद साड़ी में, उत्तरा कैसे जा रही है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उत्तरा की तरफ देखा, उत्तरा ने कहा मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, मेरे को जीने की इच्छा नहीं थी, मैं तो अपनी पति के साथ सती हो गई होती, लेकिन पांडवों के कुल का अंतिम अंकुर मेरे उदर में है और ये भक्ति का आपका एक भक्त का निशानी है मेरे पास, इसकी रक्षा के लिए मैं रुकी हुई थी, आज कहीं से कोई जलता हुआ अग्नि की तरह इसको जलाने के लिए आ रहा है, आप मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। भगवान श्री कृष्ण अधीर हो गए, अनुकंपित हो गए, कांप गए, और कांपते कांपते भगवान कहां से जाना है, कहीं दूर से आना नहीं है, हृदय में बैठे हुए भगवान उधर में उतर गए, इतने अधीर हो गए, इतनी तेज गदा को चलाई, चक्कर की तरह चलने लगी, ब्रह्म अस्त्र से उस छोटे बालक की उत्तरा के उधर में रक्षा की भगवान ने। इस उत्तरा मां, ऐसे महाभारत में लिखा है कि ब्रह्म अस्त्र के तेज से परीक्षित के प्राण निकल चुके थे, और भगवान श्री कृष्ण ने कहा अगर कौरव पांडव के युद्ध में मैंने किसी का पक्षपात नहीं किया है तो ये बालक जीवित हो जाए। और क्या भगवान का ये कहना, परीक्षित वापस प्राण का संचार हो गया। ये भगवान की वाणी को सत्य करने के लिए ऐसे प्रहलाद महाराज ने एक बार कहा था, जब उसके 2 गुरु के बेटों ने संडे और अमरकर ने कृत्या को भेजी थी जो प्रहलाद को जलाने के लिए आई थी, लेकिन प्रहलाद तो गोविंद गोविंद गा रहा था, वापस चली गई और दोनों गुरु के बेटों को मार दिया। प्रहलाद, अरे मेरे गुरु के बेटों को मार दिया। एकदम प्रहलाद कहता है जिन्होंने मुझे विष दिया, जिन्होंने मुझे अग्नि में जलाना चाहा, जिन्होंने मुझे समुन्द्र में फेंका, जिसने मुझे पहाड़ से गिराया, उनकी प्रति कभी मेरे दिल में द्वेष नहीं आया हो तो मेरे गुरु के बच्चे जीवित हो जाए। और गुरु के बच्चे जिंदा हो गए। वहां कृष्ण ने ऐसे कहा था, यहां ये भक्त ऐसे कह रहे हैं। और ऐसा ही भक्त हरिदास ठाकुर जब मार्केट के अंदर कोड़े लगा रहे थे मुस्लिम शासन के लोग, वो कहे तुम मर क्यों नहीं रहे हो, बोला क्यों, बस तुम नहीं मरोगे तो राजा हमको मार जाए मार देगा। अच्छा, भगवान को प्रार्थना करते हैं, भगवान इनको मारना मत, इनको मालूम नहीं है ये क्या कर रहे हैं। हरिदास ठाकुर थोड़ी देर के लिए प्राण ऊपर चढ़ा दिए, यवन तो छोड़ के चले गए,
लेकिन महाप्रभु ने प्रकाश लीला में, महाप्रकाश लीला में बुला के हरिदास को कहा, हरिदास उस दिन मैं सुदर्शन चक्र हाथ में लेके उन यवनों का सर काटने के लिए आया था, लेकिन तुम मेरे को उनको मारने नहीं दे रहे थे, इनको मत मारो, इनको मत मारो, ये नहीं जानते हैं अब मैं क्या करता, मैं मार तो नहीं सका, लेकिन मैंने अपने आप को तेरे ऊपर ऐसी चादर की तरह ढक दिया, वो कोड़े देखो मेरी पीठ के ऊपर लगे हैं, तुमको मैंने चोट भी नहीं लगने दी। और चैतन्य महाप्रभु ने अपनी पीठ को ऐसे दिखाया और उन कोड़ों के निशान को हरिदास ठाकुर ने देखा। तो भगवान ऐसे अपने भक्त की रक्षा करते हैं, जो भक्त दूसरों के हित का सोचता है, दूसरे के प्रति द्वेष नहीं करता, अद्वेष्ट सर्वभूतानां मैत्र करुण एवच, जो दूसरों से द्वेष नहीं करता है भगवान उनकी रक्षा करता है, उनको अपना मानता है, गोद में बिठा के रखता है। तो ऐसा ये उत्तरा का दर्शन है, जो विपत्ति में भगवान के चरणों में चली गई ऐसी माँ उत्तरा, जिसका ये बेटा है परीक्षित। आइए और एक दर्शन करते हैं, दूसरी महाभागवत मां नारी का। भागवत में पहले तीन तीन नारियों की महानता लिखी हुई है, उत्तरा के बाद आगे बढ़ के थोड़ी देर के लिए द्रौपदी को देखेंगे। आइए द्रौपदी का दर्शन करते हैं। युद्ध के अंतिम दिन, 18 दिन का महाभारत का युद्ध था, अंतिम दिन था युद्ध का, सेनापति द्रोणाचार्य के बेटे द्रोणाचार्य के बेटे अश्वस्थामा को बनाया, और अश्वस्थामा ने दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए रात को अंधेरे में कृतवर्मा को साथ लेकर, कृपाचार्य को साथ लेकर पांडवों के शिविर में गया। उस दिन भगवान श्री कृष्ण पांचों पांडवों को वहां से लेके किसी और स्थान सरस्वती के तट के ऊपर जाके रुके थे, लेकिन अश्वस्थामा अंदर गया, पांच द्रौपदी के बेटों का गर्दन सोए हुए काटा, और द्रौपदी के भाई दृष्टद्युम्न का गर्दन काट दिया। सुबह उठते ही द्रौपदी रोने लगी, चिल्लाने लगी, मेरे पुत्रों की रात को सोए हुए हत्या हो गई, अरे वीर गति को प्राप्त होते, युद्ध भूमि में छाती के ऊपर अस्त्र को खाया होता तो मैं खुश हो जाती, लेकिन अब इनको रात को सोए हुए मारा गया है, कहीं अधोगति न हो जाए। द्रौपदी दुख कर रही है, और उस दुख के बीच में अर्जुन को आता है, और अर्जुन कहता है, पांचाली जिसने इनको मारा है उसका सर काट के लाके तेरे चरणों में रखूंगा, उसके ऊपर तुम पांव रख के उसके बाद तर्पण करना। भगवान श्री कृष्ण सुन रहे थे, अर्जुन रथ के ऊपर चढ़े, कृष्ण सारथी बने, द्रोणाचार्य के बेटे के पीछे भागा, रथ को भगाया, थक गया अश्वस्थामा का रथ, घोड़े थक हारते हुए उसके पास ब्रह्मास्त्र था, अर्जुन की तरफ ब्रह्मास्त्र को फेंका, अर्जुन ने एकदम भगवान श्री कृष्ण का शरण लिया, हे श्री कृष्ण क्या हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मेरी रक्षा करो। श्री कृष्ण का ब्रह्मास्त्र अश्वस्थामा का है, तुम अपने ब्रह्मास्त्र का आह्वान करो। अर्जुन ब्रह्मास्त्र को आह्वान किया, एक ब्रह्मास्त्र दूसरे ब्रह्मास्त्र से टकरा, पूरे ब्रह्मांड के अंदर बहुत गर्मी होने लगी, व्यासदेव कहता है संसार जल जाएगा, अपना अपना अस्त्र वापस ले लो। द्रोणाचार्य का बेटा कहता है कि मुझे वापस लेना आता ही नहीं है, बोला मूर्ख ऐसा काम क्यों करते हो, तुम्हें वापस नहीं लेना आता है तो किन रवाना क्यों किया था। अर्जुन ने दोनों अस्त्रों को वापस किया, द्रोणाचार्य के बच्चे को रस्सी से बांधा, और बंधे हुए द्रोणाचार्य के बेटे अश्वस्थामा को जिस वक्त शिविर में लाए, द्रौपदी ने उसको देखा और देखते ही देखते कहा, मुझे इसको खोलो, इसको खोलो, ये ब्राह्मण पुत्र है और ये गुरु का पुत्र है, इसको बांध के क्यों लाए हो। और द्रौपदी इसके बाद जो शब्द कहती है, ये तो कोई ऐसी नारी कह सकती है जो भगवान से बहुत प्रेम करती है, कहती है, इसको मत मारो, पुत्र के मृत्यु का दुख मैं सह चुकी हूं, मुझे मालूम है मेरे पांच पुत्र मारे गए हैं, जो दुख मुझे हुआ है वो मैं नहीं चाहती हूं कि इसकी मां को हो। और फिर आगे कहती है, मेरे तो आप पांच पति अभी जीवित हो, अरे उस कृपी का पति द्रोणाचार्य आपका गुरु पहले ही तो सदगति को प्राप्त हो गया, आप इसको मत मारो, इसको जाने दो। ऐसी उधार द्रौपदी जो दया की मूर्ति है, उसका पोता है परीक्षित, उसके हृदय में भगवान भागवत नहीं देंगे तो और किसको भागवत का अधिकारी कौन हो सकता है, जिसका हृदय इतना करुण। और दादी परीक्षित की दादी सुभद्रा भगवान श्री कृष्ण की बहन यही विराजती है, कहीं उंगली उठा के कृष्ण को कहीं भी नहीं कहा, कभी भी नहीं कहा कि मेरे बेटे को ऐसे कैसे हो गया, मेरे पोते को। चुप होके मूक रूप से कृष्ण की लीला का दर्शन कर रही थी, शांत बिल्कुल, न कभी कृष्ण को कहा कि ऐसे क्यों हुआ वैसे क्यों हुआ, आनंद से दर्शन कर रही थी। तो ये तीन मात्र कुल है परीक्षित महाराज का जिसका वर्णन है। और फिर आता है कुंती का वर्णन, आठवें अध्याय में आते हैं, कुंती का वर्णन आता है। कुंती महारानी कितनी महान है, उसकी प्रार्थना को पहला स्थान भागवत में दिया गया है। और कुंती महारानी उस वक्त भगवान श्री कृष्ण को प्रार्थना करने लगी जिस वक्त भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर से द्वारका जाने के लिए तैयार हुए, रथ के ऊपर आरूढ़ हुए। और कुंती उस वक्त कहती है कृष्ण को ये शब्द कहा जो आपने अभी उच्चारण किया, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च। कृष्ण ने पीछे मुड़ के देखा, हाँ मैं वसुदेव के पास जा रहा हूं, देवकी के पास जा रहा हूं, मैं समझ लिया। तब कुंती कहती है नंद गोप कुमार आए, नंद का नाम सुना बिरजा वृंदावन याद आई। कृष्ण अधीर होकर रथ से नीचे उतर पड़े, गोविंद आए कहने से पहले ही जाके कुंती महारानी जी के चरणों को छू लिया। भगवान का कोई किसी भक्त के नाम से जब पुकारता है तो भगवान रुक नहीं सकते। नंद गोप कुमारा कह दिया तो ओ कृष्ण कुछ नहीं दिखाई दिया सवाय नंद बाबा के और गोकुल के, कुछ और दिखाई नहीं दिया। एकदम जब भगवान के भक्त का नाम लेता है भगवान भाग के वहां आ जाते हैं। मां कुंती रानी ने बहुत सुंदर प्रार्थना की है, इतनी अद्भुत प्रार्थना है भगवान के लिए कुंती महारानी की। आप तो किसी अभिनेता की तरह ऐसे हमारे घर में यदुवंशियों में प्रकट हो हुए, पांडवों के संबंधी बन के खड़े हो, हमारे बीच में ऐसे लीला कर रहे हो, हम पहचान नहीं पा रहे। लेकिन मैंने आपको देखा था, दिवाली का दिन था, मैं आई हुई थी, मेरे पियर में, मेरे मैके में, गोकुल में मैं थी। अरे भय जिससे भयभीत होता है भगवान, मैंने देखा था उस गोपी के हाथ में लाठी देखकर तुम कैसे रो रहे थे और तेरे को उखल में बांधा था, उस दिन मैं वहां थी, मैंने वो देखा था। और कुंती महारानी आगे कहती है आपने कैसे मेरे बच्चों की रक्षा की है, अरे विष से भीम को बचाया था, लाक्षाग्रह से मेरे पांच बच्चों को बचाया, आपने कहां कहां मेरी रक्षा नहीं की है भगवान। मैंने अभी देखा पांच ब्रह्म वहां अस्त्र आके मेरे पांच बच्चों को मार रहे थे, आपने उनकी रक्षा की है। अब द्रौपदी ने ऐसी विलक्षण प्रार्थना की आज तक किस धरती के ऊपर किसी ने नहीं की है। कहती है कृष्ण ये दुख बार बार आए, ये दुख बार बार आए क्यों, इसलिए दुख आते हैं तो आप याद आते हो, आप याद आते हो तो आपके दर्शन होते हैं। आज ये हमको त्रिलोकी राज देकर सुख देकर जा रहे हो, इस सुख से तो आपका दुख अच्छा था। विपत्ति विपत्ति सद्भव, हमारे पर विपत्तियां आए उस विपत्तियों से हम दुखी नहीं होंगे, क्योंकि आपके दर्शन होंगे तो दुख अपने आप दूर हो जाएंगे। ये कुंती महारानी जैसी प्रार्थना आज तक इस धरती के ऊपर किसी ने नहीं की, ये विलक्षण प्रार्थना इस मां कुंती की है। वो ऐसी मां कुंती है जिसने जिस वक्त सुना कि श्री कृष्ण इस धराधाम से चले गए हैं, इतना पूरा नहीं सुना, उससे पहले प्राण दे दिया था। तो ये ऐसे भागवत भक्तों का पुराण है जिसमें ये तो पितृ, ये मातृ कुल है परीक्षित का। अब पितृ कुल का परिचय देखिए, नवे अध्याय में प्रवेश करेंगे तो भीष्म पितामह का दर्शन होगा। भीष्म पितामह का दर्शन हो रहा है, पहले एक देख लीजिए, पांडु न पुरुवंश से था न कुरुवंश से था, इसको रख दो जब इसका टाइम होगा तब देखेंगे। पांडु न पुरुवंश से था न कुरुवंश से था, ध्यान दीजिएगा, पांडु व्यास का पुत्र था, पांडु व्यास पुत्र है, साधारण नहीं है, और व्यास भगवान का अवतार है, और पांचों पांडव देवताओं की अंश है, अर्जुन इंद्र का अंश है, धर्मराज युधिष्ठिर है, धर्मराज है, भीम वायु पुत्र है, नकुल सहदेव अश्वनी कुमार है। अरे ये तो कुंती के ऊपर दुर्वासा की कृपा हुई थी, आवाहन करते थे देवता के, और देवता के केवल संकल्प से इनको ये पुत्र उत्पन्न हुए थे, ये साधारण नहीं थे। ये द्रौपदी भी साधारण नहीं थी, यज्ञ से अंदर से उत्पन्न हुई थी, यज्ञ से उत्पन्न हुई ये द्रौपदी थी, साधारण नहीं थी। और सुभद्रा तो साक्षात योग माया है, भगवान की बहन है, ये सब भगवान की लीला के पात्र हैं। ये सब तैयारी हो रही है किसके लिए, अपन कृष्ण जन्म में जब पहुंचेंगे तब तो उसको देखेंगे। देवकी और वसुदेव जेल के अंदर थे, छह बच्चे मारे गए, दुख भोगे, काय के लिए,
कृष्ण के प्रकट्य के लिए कि कृष्ण प्रकट होगा। आज परीक्षित का ये सारा कुल इन परीक्षाओं से गुजर रहा है। क्यों? परीक्षित को देवकी और वसुदेव की तरह, देवकी और वसुदेव की तरह तैयार करना है। काय के लिए? भागवत के अवतार के लिए। परीक्षित के ऊपर भागवत का अवतार होना है, इसलिए पार और परीक्षित को पक्का किया जा रहा है। तो पितृ कुल के अंदर दर्शन कीजिए भीष्म पितामह का। बात यहां शुरू होती है। युधिष्ठिर महाराज महाभारत युद्ध के बाद बड़े दुखी हुए, बोला मेरे कारण लाखों लोग मारे गए, कई स्त्रियां विधवा हो गई, किनके बेटे चले गए, किनके पति चले गए, इस अपराध को मैं कैसे पार पाऊंगा? अरे शराब के बर्तन को शराब से धोने से साफ थोड़ी होगा, आप यज्ञ कराएं उससे ये पाप धुल नहीं सकते, मेरे को ये राज नहीं चाहिए। भगवान श्री कृष्ण शिक्षा दे रहे हैं, व्यासदेव शिक्षा दे रहे हैं, धौम्य शिक्षा दे रहा है, किसी की बात युधिष्ठिर नहीं मान रहे। क्यों नहीं मान रहे? अंदर बैठे हुए भगवान श्री कृष्ण कहते मत मानो, बाहर से कह रहे हैं मैं कह रहा हूं, जो मैं कह रहा हूं वो करो, अंदर से बोल रहे मत मानना। ये भगवान श्री कृष्ण के लिए ऐसे क्यों कर रहे हैं? भगवान श्री कृष्ण श्रेय हमेशा अपने भक्तों को देना चाहते हैं, अपने लिए श्रेय नहीं लेते। श्री कृष्ण के मन में विचार है, आ भीष्म पितामह अब जाने की तैयारी कर रहा है। इस युधिष्ठिर को राज का ज्ञान भीष्म पितामह के द्वारा देके भीष्म पितामह का मान बढ़ाना है। अब यहां युधिष्ठिर महाराज देखते हैं तो एक दिन श्री कृष्ण ऐसे ध्यान में बैठे हैं। युधिष्ठिर ने कहा किसका ध्यान कर रहे हैं? दुनिया आपका ध्यान करती है, आप किसका कर रहे हैं? कृष्ण कहते हैं इस वक्त गंगा पुत्र उत्तरायण आ रहा है और शरीर त्यागने की तैयारी कर रहा है और मेरा ध्यान कर रहा है, और मेरा ध्यान कर रहा है इसलिए मैं उसका ध्यान कर रहा हूं। आप सब चलो, हम सब कुरुक्षेत्र चलेंगे। पांडव तैयार हो गए, रथ तैयार हो गए, कुरुक्षेत्र में पहुंचने का प्रयास चालू हुआ। यह समाचार ब्रह्मांड में पहुंच गया और ब्रह्मांड से अत्रि आए, अंगिरा आए, गौतम आए, कश्यप आए, परशुराम आए अपने शिष्यों के साथ। ये सब ऋषि गण आके वहां बैठ गए भीष्म पितामह के चारों ओर। भीष्म पितामह ने सबको, हाथों में तीर लगे हुए थे, सर सैया के ऊपर सोए हुए थे, प्राण के अंदर से सारा रक्त बह चुका था, लेकिन पिता की आशीर्वाद थी कि इच्छा मृत्यु का वरदान था। भीष्म सबका सम्मान कर रहा है, तब अचानक पांडवों को देख के प्रसन्न होता है। युधिष्ठिर महाराज के सर के ऊपर ताज को देखा, भीष्म ने कहा अब मेरा वचन सफल हो गया, मैंने कहा था जिस दिन हस्तिनापुर को सुरक्षित हाथों में देखूंगा उस दिन मैं प्राण त्यागूंगा, अब तो धर्मराज के हाथ में है हस्तिनापुर, अब मैं जा सकता हूं। यह संकल्प भीष्म ने कहा, यह भीष्म ने वचन दिया था अपने पिता को कि जब तक हस्तिनापुर का सिंहासन सुरक्षित नहीं होगा तब तक मैं इसकी रक्षा करूंगा। अब युधिष्ठिर महाराज को देख के कहते हैं हाँ बस हो गया अब मैं, और कहते कृष्ण कहां है? भीष्म ने यह कहा और पीछे देखा कृष्ण को, और कृष्ण को देखा, प्रणाम किया कृष्ण को, और फिर युधिष्ठिर से कहने लगे आप धर्मराज, आपका कोई शत्रु नहीं, आप अजात शत्रु हैं, और कृष्ण आपका सखा है, आपका आपको बड़ा भाई समझ के आपकी सेवा करता है, फिर भी आपके ऊपर इतने कठिनाई आए, इतने दुख आए, इतने ताप आए, इतने संताप आए, हमको समझने में नहीं आता है कि इतने कष्ट आपने क्यों भोगे। 12 साल वनवास भोगा, द्रौपदी का अपमान आपने अपने आंखों से देखा, ये कैसे सब हो गया? और फिर भीष्म ही उत्तर देते हैं, भीष्म पितामह कहते हैं ये सब काल के कारण है, काल बड़ा बलवान है, समय इतना बलवान होता है, कब दिन होता है, कभी रात होती है, कभी बादल होता है, कभी बरसात होती है, कभी तारा राज की रानी होती है और कभी धोबियानी बन के कपड़े धोने लगती है, कभी द्रौपदी 5 पांडवों की पटरानी होती है और कभी सेंद्री बन के विराट नगर में बैठ के रानी का श्रृंगार करती है। समय बलवान होता है, कभी किसको ऊपर बिठाता है, कभी किसी को नीचे कर देता है। भीष्म पिता कहते ये काल का कमाल है। अब भीष्म पिता मैंने राज शिक्षा दी युधिष्ठिर महाराज को, वर्ण आश्रम शिक्षा दी, वो भीष्म पितामह जिस संसार के ऊपर ऐसा वीर संसार के ऊपर हुआ नहीं है, किसी ने सुना नहीं होगा, नाम उसका भीष्म नहीं था, नाम तो उसका देवव्रत था, गंगा का पुत्र था,
ऐसा पितृ भक्त भी इस पृथ्वी के ऊपर आज तक नहीं हुआ है जिसने अपनी पिता की इच्छा को पूछा नहीं, पिता ने कहा नहीं। एक दिन पिताजी लौटे, रथ के अंदर चिंतित थे, सारथी से पूछा, पिताजी कहां से आ रहे हैं? गंगा जी के तट से आ रहे हैं। कहां से, किससे मिल के आ रहे हैं? वह मछियारे से मिल के आ रहे हैं, भीष्म देवव्रत वहां चला गया गंगा पुत्र। पूछा, आपके यहां आए थे? हाँ आए थे। क्या कहा? बोला, हमारी पुत्री सत्यवती का हाथ मांग रहे थे। तो बोला, आप महाराज को नहीं दिया? एक राज, ये तो इस वक्त शांतिनु, ये तो महाराज हैं, पूरे इस पृथ्वी के एक छत्र सम्राट हैं, उसको बच्ची क्यों नहीं दी? महारानी बनती? बोला, हाँ बनती, लेकिन मेरी बेटी का बेटा राजा तो नहीं बन सकता था ना। क्यों? बोला, आप जो हो बेटा उसका बड़ा, आपको राज का अधिकार मिलेगा ना। भीष्म ने कहा, मैं आपसे वायदा करता हूं कि मैं राज नहीं लूंगा। और वो कह रहा है, आप राज नहीं लोगे, आप सत्यवादी हो, मान लेता हूं ऐसे करोगे, लेकिन आप शादी करोगे, आपके बेटे होंगे, वो कहेंगे कि हमारा राज के ऊपर अधिकार है। अब भीष्म कहता है, मैं प्रतिज्ञा करता हूं, दिशाएं सुन लो, देवताओं सुन लो, मैं गंगा पुत्र शांतिनु पुत्र भीष्म ये प्रतिज्ञा करता हूं, मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा। अब आकाश से आवाज आया, भीषण भीषम भीषम बहुत भीषम, मतलब बहुत बड़ी कठोर तपस्या कर ली। अरे ब्रह्मचारी वन में रहना बहुत आसान है, राजमहल के अंदर सब भोगों के बीच में ब्रह्मचारी रहना, ये भीष्म पितामह का एक है, ऐसा कोई ब्रह्मचारी नहीं रहा है जो राजमहल में रह के ब्रह्मचारी रहा हो, राज के सुखों के बीच में ब्रह्मचारी रहा हो। और ऐसा ब्रह्मचारी जिसके जो तीन जब हरण करके लाया था काशी नरेश की बेटिया, एक ने कहा तुमसे विवाह करूंगी और शिकायत लेके गुरु परशुराम के पास चली गई, परशुराम युद्ध करने के लिए साक्षात भीष्म से आगे खड़े हो गए, भीष्म और परशुराम के बीच में युद्ध हुआ, गुरु शिष्य के बीच में युद्ध हुआ, लेकिन परशुराम को कह दिया गुरु जी को कि मैंने सत्यव्रत लिया हुआ है, मैं ब्रह्मचारी रहूंगा। गुरु ने कहा बेटा ठीक है, जाओ आशीर्वाद है मेरी, ऐसा भीष्म इस पृथ्वी के ऊपर उसकी जोड़ का आज तक कोई पैदा नहीं हुआ, इस धरती को याद करेगी उस भीष्म को। उस भीष्म को जब पिता ने देखा कि मेरे विवाह का प्रबंध मेरा बेटा करके आया है, तब कह दिया पुत्र तुम पहले नंबर का पुत्र हो, मेरे में पूछे बगैर मेरे कहे बगैर तुमने काम कर दिया, इच्छा मृत्यु का मैं आपको वरदान देता हूं, अब तुम्हारी इच्छा होगी तब तुम प्राण त्याग सकते हो। अब वो भीष्म अपनी इच्छा कर रहा है कि मुझे प्राण त्यागना है, अब इच्छा कर रहा है कि मुझे प्राण त्यागना है। उत्तरायण आ गई, दुनिया के अंदर लाखों विषयों के ऊपर बोलने वाला बड़ा विद्वान, 12 महाजनों में एक भीष्म महाजन है, और ये धर्मराज युधिष्ठिर यमराज कहता है भीष्मो बलि कपिलो उसमें से एक ये है, आज सब जगह से अपनी वृत्ति को हटा के भगवान श्री कृष्ण के सामने कहते हैं मेरी ये बुद्धि आज मैं आपके चरणों में अर्पण करता हूं। और यह भीष्म प्रार्थना भगवान श्री कृष्ण की करता है, ये आपका तमाल जैसा सांवला रंग है, ये आपकी चार भुजाएं हैं, ये आपका पीतांबर पहना हुआ है, आप प्रतीक्षा करेंगे जब तक मैं प्राण नहीं त्यागूंगा तब आप यहां रहेंगे, कितनी बड़ी दया करके मुस्कुराते हुए आप खड़े हैं, प्रतीक्षा में भी आप मुस्कुराते हुए मेरे लिए खड़े हैं। अरे आप विजय सखा हो, आप अर्जुन के सखा हो ना, अर्जुन के रथ को आपने अपना कुटुंब मान लिया था, उनकी रक्षा के लिए आपने सब कुछ किया था, आप बड़े दयालु हुए, मेरे को वो दिन याद है। अब भीष्म कहता है वो मेरे को दिन याद है, मेरे वचन की रक्षा करने के लिए आपने अपना वचन तोड़ दिया, घोरों के टापू से उड़ी हुई धूली आपके गुंगरालू भाल और उसके ऊपर पसीना, उसके ऊपर वो जमी हुई धूल, और उस धूल के अंदर आप हाथ में उठा के चक्कर पहिए का और मेरे ऊपर दौड़े थे, जैसे शेर हाथी के ऊपर दौड़ता है, वो आपका वीर रूप में देखता हूं और उस रूप को देखते हुए मैं प्राण त्याग दूं, ये मेरी इच्छा है। ये भीष्म की प्रार्थना इतनी विलक्षण है, इतनी विलक्षण है। अंत समय इसके बाद कहता है गोपियां जो आपको कभी न भूल पाई थी, ये गोपियों का भाव हुआ करता था। शाम को जब वापस गोपाल आते हैं गैया चरा के, गोधूली के समय धूली अलकों के ऊपर लगी हुई धूली, चेहरे में पसीना, मुस्कुराते हुए गोपाल को देखने के लिए खड़ी होती हैं। आज भीष्म वीर रस को, ये इसको वीर रस बोलते हैं, युद्ध भूमि में वीर रस,
कृष्ण के हाथ में ये क्यों तोड़ा था वचन मालूम है आपको? भीष्म पितामह को अर्जुन जाके कहा, दुर्योधन ने आप पक्षपात करते हैं, आपको बड़ा प्रेम अर्जुन आदि से है, आप उनको नहीं मार रहे, देखो हमारी सेना रोज मर रही है। क्षत्रिय, क्षत्रिय को कोई ऐसे कहता है तो क्षत्रिय एकदम अब उसका क्षत्रिय धर्म आ जाता है, पांच बाण निकाले ऐसे। भीष्म ने कहा ये पांच बाण कल पांच पांडवों के लिए हैं, ये मेरी प्रतिज्ञा है। अब दुर्योधन कहता है, उसको शंका हो गई कि ऐसे तो नहीं है कल इसका मन बदल जाए। बाण बोला मेरे को तो दादा, मैं सुबह आपको दूंगा। बाण लेके दुर्योधन चला गया अपने शिविर में। कृष्ण ने जाके अर्जुन को उठाया, अर्जुन उठो, बोला मेरे को सोने दो, मैं युद्ध करके थक गया हूं। बोला हाँ चिंता नहीं है, बोला चिंता आप करो। कृष्ण को कहता आप चिंता करो, बोला उठो उठो पार्थ, क्या बात है? बोला आपको मालूम है एक वचन दिया था आपको दुर्योधन ने। कहा कौन सा? बोला आप जब वन में थे और ये दुर्योधन आदि दुशासन आदि कर्ण आदि आके बहुत बड़ा शिविर लगा के वहां भोजन बना के और भीम को जलाना चाह रहे थे, तब गंधर्व ने चित्ररथ ने पकड़ के बंदी बना दिया था दुर्योधन को, कर्ण भी उसका रक्षा नहीं कर पाया था। उस वक्त युधिष्ठिर महाराज को यह समाचार मिला कि दुर्योधन बंदी बन गया है। उस वक्त जो युधिष्ठिर ने शब्द कहे ये आप सबके लिए बहुत मुख्य है, जीवन में ये शब्द सुन लीजिए, दुर्योधन ने क्या कहा और युधिष्ठिर महाराज क्या कह रहे हैं। संसार के लिए हम पांच पांडव हैं, दुनिया की दृष्टि में हम पांच पांडव हैं और 100 कौरव हैं। अगर दुनिया से हमारे को कोई व्यवहार करना होगा तो हम 105 हैं, दुनिया से व्यवहार करना है तो हम 105 हैं। हमारे घर में हम अगर अलग है, हमारे घर का झगड़ा है, दुनिया से इस झगड़े को कुछ लेना नहीं है। आपस में हम घर में झगड़े कोई बात नहीं भाइयों के बीच में, लेकिन संसार के सामने एक दूसरे का बाल नहीं खींचना चाहिए, तब हम साथ रहने चाहिए। ये युधिष्ठिर महाराज दे रहे शिक्षा। हम 105 हैं, अब क्या करें? जाओ दुर्योधन को मुक्त कराओ। भीम कहता है मारने के मारना, जो उनको मारने तो नहीं, मैं जाके मारता हूं, मारूंगा गदा उसके सर के ऊपर। युधिष्ठिर कहता है अर्जुन जाओ उसकी रक्षा करो। अर्जुन गए, वो जो गंधर्व था वो अर्जुन का मित्र था, उसने अर्जुन को देखा, दुर्योधन को छोड़ दिया। दुर्योधन कहा अर्जुन तुम मेरे छोटे भाई हो, आज तुम मांग लो मुझसे, क्या मांगते हो? हस्तनापुर मांग लो, तेरे को हस्तनापुर दे दूंगा। अर्जुन कहता है वो लेनी होगी तो लड़के लूंगा, अभी मुझे वर की इच्छा नहीं है, जब जरूरत पड़ेगी तब मांग लूंगा। अब कृष्ण कहता है जाओ दुर्योधन को बोलो कि तुमने मेरे को एक वचन दिया था ना, आज वो वचन याद करो, और जब वो बोले कि क्या चाहिए, तब बोलना वो पांच बाण दे दो जो भीष्म ने तुम्हारे पास रखवाए हैं। अब रात को अर्जुन दुर्योधन के शिविर में पहुंचा। दुर्योधन कहा इस वक्त कैसे पार्थ पधारे? बोला आपने एक वचन दिया था आपको याद है? बोला हां। आपने जब मेरे को गंधर्वों से रक्षा की थी तब ना? बोला हां। बोला मेरे को वचन आज मैं आपसे मांगने आया हूं। बोला क्या चाहिए? राज चाहिए, ले लो, युद्ध खत्म कर देते हैं। बोला वो तो हम लड़ लेंगे, फिर क्या चाहिए? बोला वो पांच बाण जो भीष्म ने दिए वो मेरे को दे दो। और दुर्योधन ने ऐसे पांच बाण उठा के अर्जुन के हाथ में दे दिए। अर्जुन बाण लेके आया, सुबह भीष्म पितामह कहते अर्जुन दुर्योधन मेरे बाण लाओ। अब दुर्योधन कहता है वो बाण तो रात मैंने अर्जुन को दे दिए। अब भीष्म कहता है ये काम कृष्ण का है, उसने मेरे वचन को तोड़वा दिया। आज मैं इन बाणों से पांडवों की हत्या करनी थी मेरे को, आज मैं ये वचन करता हूं। या तो कृष्ण को अपना वचन तोड़ना पड़ेगा, नहीं तो मैं अर्जुन की ऐसी स्थिति करूंगा कि अर्जुन कृष्ण अपना वचन तोड़ेगा। और भीष्म ने ऐसा भयंकर युद्ध किया, अर्जुन बिल्कुल व्यवहल हो गए, कृष्ण देख नहीं पाए अर्जुन को, अर्जुन की रक्षा के लिए रथ से कूद पड़े, और कूद पड़े तो पीतांबर नीचे गिर गया पृथ्वी के ऊपर, पृथ्वी कांपने लगी। अरे अपना अपना वचन तोड़ रहे हैं भगवान,
अपना वचन तोड़ रहे हैं। भगवान ये देखते पृथ्वी कांपने लगी, पृथ्वी के ऊपर पीतांबर दे दिया, वो शांत हो गई और हाथ में ऐसे, और भीष्म ने अपने हस्त्र शस्त्र रख के देखने लगा बड़े प्रेम से कृष्ण के उस रूप को, ऐसे आंखों खुली से देखने लगा, मेरे वचन की रक्षा करने के लिए अपना वचन आपने तोड़ दिया था। और ये कहने के बाद खुली आंखों से ऐसे कृष्ण के रूप को पीते पीते भीष्म पितामह ने प्राण त्यागी। तभी तो भक्तों ने प्रेम से गाया है, इतनी तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। दो शब्द गालोगे, कहाँ गया आपका साथी?
इतना तो कर जब प्राण तन से निकले, इतना तो कर प्राण तन से निकले, इतना तो कर Yeah.
हरे कृष्णा। भीष्म पितामह का तो हमने नहीं देखा था भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति में भगवत धाम जाना, लेकिन इस जन्म में साधु संतों को ऐसे यहां से जाते हुए देखने का अवसर कई बार मिलता है। प्रभुपाद जी के अंत समय में वृंदावन था, चारों ओर से भक्त बैठे थे और ये हरे राधा को संबोधन है और कृष्ण, ये हरे कृष्ण मंत्र का उच्चारण चारों ओर से हो रहा था और भागवत के ऊपर अपने मुख से वो टीका लिखते हुए इस संसार से जा रहे थे। ऐसा ही प्राण त्याग का उनको अवसर मिला था जैसा भीष्म देव को जाते हुए मिला था। और साधु संतों को जाने के समय चारों ओर चार भक्त बैठ के हरि कीर्तन करेंगे, ये और आनंद का समय हो जाएगा। आनंद ही आनंद उनके लिए है। रोना धोना साधुओं के पीछे नहीं होता है, बड़े उत्सव मनाए जाते हैं कि अपने घर जा रहा है। अरे जब लड़की अपने घर जाती है तो बहुत बड़ा उत्सव मनाया जाता है, आंखों में आंसू जरूर आते हैं कि हम जुदा हो रहे हैं, लेकिन ये तो अपने घर जा रहा है ना, ये ऐसा भाव है कि वो अपने घर जा रहा है, ठाकुर जी के चरणों में जा रहा है। इसलिए यहाँ भीष्म पितामह के बाद में आगे के अध्याय में भगवान श्री कृष्ण की हस्तिनापुर से विदाई हो रही है। अब तो युधिष्ठिर महाराज साथ चलने को तैयार है, रथ को अर्जुन रथ के ऊपर बैठा, ये सात्यकी ऊपर चवर झुला रहे हैं और रथ बाहर चारों ओर से स्त्रियां ऊपर खड़ी होकर भगवान का दर्शन कर रहे हैं। तभी भी छुप के ऊपर अटारियों में खड़ती थी स्त्रियां, खड़ी होती थी, नीचे नहीं आती थी। और सारे चले आगे, रास्ते में जहां जहां से भगवान का रथ गया श्री कृष्ण का सबने स्वागत किया। और द्वारका में प्रवेश करने से पहले भगवान ने शंख बजाया और सुंदर शंख की ध्वनि सुनकर द्वारकावासी आनंदित हो गए। अरे आ, शंख की ध्वनि सुनने में भी अंतर होता है। यही शंख कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में बजाया था और कौरवों के दिल फट गए थे। यही आज कृष्ण शंख बजा रहा है और द्वारकावासी आनंदित होके सब जहां खड़े थे वहां से उठ के भागे कृष्ण के दर्शन करने के लिए। ब्राह्मणों को लिया, गो बलराम जी आए और राजा महाराजा सब राजा आए, वसुदेव आदि, कृष्ण ने सबका स्वागत किया, नागरिक सब ने स्वागत किया। कृष्ण अपने द्वारका में प्रवेश हुए, सबको प्रणाम किया, बड़ों को बराबर वालों को गले मिले, छोटों को आशीर्वाद दिया, किसी को आंखों से दिया, किसी को हाथ के दिया, किसी को मुख से दिया। अपने महलों में प्रवेश किया तो भगवान श्री कृष्ण की रानियां जो भगवान के ध्यान में बैठी थी बाहर भी नहीं निकलती थी, अपने छोटे बच्चों को भेजा, छोटे बच्चों को भगवान ने गले से लगाया और रानियों ने हृदय में भगवान ने उन बच्चों को गले में लगाया, उन्होंने अपने आंखों से भगवान को गले में लगाया और भगवान द्वारका में जाके सुखी हो गए। इन दो अध्यायों के बाद परीक्षित के जन्म का वर्णन है। परीक्षित का नाम तो परीक्षित नहीं था, नाम तो देवव्रत था। परीक्षित इसके लिए कहते हैं कि वो परीक्षा लेता था। परीक्षा लेने का मतलब जिसको देखता था ऐसे देखता रहता था कौन है, तो उसका नाम परीक्षित हो गया। एक दिन छोटा सा बालक परीक्षित सभा में लाया गया, युधिष्ठिर के पास बैठा हुआ है। भगवान श्री कृष्ण द्वारका से आए हुए थे, तीन अश्वमेध यज्ञ युधिष्ठिर ने कराए थे, युधिष्ठिर से श्री कृष्ण बैठे हुए थे। परीक्षित चल के छोटा सा बच्चा ऐसे कृष्ण के पास खड़ा आके ऐसे देखने लगा और आंख छपके नहीं देख रहा है और किसी को नहीं देख रहा है। व्यासदेव पास में बैठा था, कृष्ण को कहा, कृष्ण ये आपको पहचान गया है, ये ढूंढ रहा था कि मेरी मां के गर्भ में मैंने मेरी रक्षा किसने की थी, आज आपको देख के आपको पहचान गया है। लेकिन उस वक्त आपकी चार भुजाएं थी, आप हृदय से नीचे उतरे थे उत्तरा के गर्भ में, परमात्मा रूप में विष्णु के रूप में चार भुजा में रहते हैं, आपकी इस वक्त दो भुजाएं, दो और भुजाएं निकल लो तो इस बालक का संतुष्टि हो जाए। उस वक्त भगवान श्री कृष्ण चतुर्भुज हुए। परीक्षित ने उसके बाद किसी को और नहीं देखा, आखिरी बार कृष्ण को देखा, बोला यही मेरा है। ऐसा परीक्षित जिसके जन्म के समय बहुत दान दिया युधिष्ठिर महाराज ने, एक ही तो अंकुर था भक्ति का उनके घर में, अर्जुन के बेटे का बेटा था, पांडवों के कुल में एक ही बचा था, बड़ा अद्भुत। ब्राह्मण ने कहा कि आप जैसा धीर होगा, वीर होगा,
भगवान के समान इसमें धीरज होगा, बहुत सद्गुण संपन्न जैसे भगवान है ऐसे भगवान के भक्त होते हैं, बड़ा अद्भुत वर्णन करते हैं। परीक्षित का विवाह होता है, उत्तर कुमार की बेटी से उसका विवाह होता है। उस लड़की को पंडित जी ने बताया था कि तुम रहोगी तो चक्रवर्ती की पत्नी, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, पति को कभी शिकार करने के लिए विशेष एक दिशा में मत जाने देना, अगर जाए भी तो कहना किसी संत महात्मा का अपमान न करे। एक यही उसके आपके जीवन में कुछ लिखा हुआ है। परीक्षित के जन्म के बाद भगवान श्री कृष्ण का स्वधाम जाने का वर्णन आता है। युधिष्ठिर महाराज के राज के अंदर सब सुख सुविधाएं थी, प्रकृति समुद्र अपने समय अंदर से हीरे मोती देते थे, पहाड़ उनके अंदर जो भी मेटल्स होते थे वो सब देते थे, समय पे बरसात पड़ती थी, सब लोग सुखी थे। अर्जुन को भेजा था युधिष्ठिर ने कि जाओ भगवान श्री कृष्ण से द्वारका से पूछ के आओ आगे उनका क्या प्रोग्राम है। अर्जुन वापस नहीं लौटा, चारों ओर से अपशुकन होने लगे। युधिष्ठिर महाराज बड़ा चिंतित हो गया, अरे मेरे को देख के चारों ओर से गधा मेरी परिक्रमा जैसे कर रहा है, ये गलत आवाज कहां से आ रहा है, अरे भीम ये देखो कैसे शुकन हो रहे हैं, लगता है कुछ हो गया है, क्या हो गया है समझ में नहीं आता है। इतनी देर में अर्जुन वहां आते हैं, बहुत दुखी है, चिंता में घिरे हुए हैं। युधिष्ठिर महाराज पूछते हैं क्या बात है अर्जुन, तुमको क्या क्यों इतने दुखी हो, क्या किसी ने आपका अपमान किया है, क्या ज्यादा देर आप रह गए थे द्वारका में, इसलिए उन लोगों के ज्यादा देर किसी के पास रहने से क्या आपको ऐसे किसी के को आपने भोजन नहीं योग्य आदमी को खिलाया है, क्या किसी साधु संत को, ऐसे बहुत से प्रश्न करने के बाद डरते डरते पूछते हैं क्या हमारा प्रीतम भगवान श्री कृष्ण, आगे नहीं पूछा। और अर्जुन की आंखों से आंसू बहने लगे और अर्जुन कहता है, थोड़ी देर तो बोल नहीं पाया, फिर बोला जो हमारा सखा था, जो हमारा सारथी था, जिसके कारण मैं सारे पराक्रम के काम कर सका था, वही मैं गांडीवधारी अर्जुन था, वही भगवान श्री कृष्ण जब मेरे साथ था मैं सब कार्य कर पाया था, और आज श्री कृष्ण हमको छोड़ के चले गए हैं, ये छोड़ के चले गए हैं। ये शब्द सुना महाराज युधिष्ठिर ने अपना मुकुट उतार के नीचे रखा, बोला ये राज कृष्ण का दिया हुआ है, उसने कहा था इसलिए राज कर रहे थे, वो नहीं रहे तो हम राज नहीं करेंगे। भीम ने अपना मुकुट उतार के नीचे रखा, बोला धर्मराज राज नहीं करेंगे तो हम भी नहीं करेंगे। नकुल सहदेव ने भी ऐसे किया। ये समाचार अंदर गया, कुंती महारानी कहती है जब अर्जुन आते हैं तो मेरा चरण स्पर्श कर से आशीर्वाद लेते, आज अर्जुन अभी तक यहां क्यों नहीं आया। किसी ने कहा अर्जुन सभा के अंदर द्वारका का समाचार दे रहा है और भगवान श्री कृष्ण अपने धाम चले गए हैं तो नहीं सुना होगा। कुंती ने प्राण त्याग दी, मदगत प्राणा, भगवत गीता में भक्त का लक्षण लिखा हुआ है, अरे मैं उस वहां से चला जाऊंगा तो उसके प्राण निकल जाएंगे। अब घर में एक तरफ माता जी कुंती महारानी और दूसरी तरफ ये राज करने को तैयार नहीं है। परीक्षित छोटे को बुला के राज तिलक देने को लिए तैयारी की, पांडवों ने जाने की तैयारी की। इससे पहले एक अध्याय बीच में है, उसके ऊपर ज्यादा हमने ध्यान इसलिए नहीं दिया, वो धृतराष्ट्र का सदगति का अध्याय है, क्योंकि धृतराष्ट्र दुर्योधन के बाद धृतराष्ट्र का नाम लेते हैं। धृतराष्ट्र का अर्थ होता है दूसरे के राष्ट्र को हड़प कर ले, राज तो था पांडु का, उसने कर लिया था हड़प। युद्ध के बाद भी गंधारी और धृतराष्ट्र दोनों माता पिता के समान उनकी सेवा करता था युधिष्ठिर। एक दिन विदुर आया वापस, विदुर ने रात रात में धृतराष्ट्र को बोला तुम यहां कहां पड़े हो, अरे भीम के टुकड़ों के ऊपर पल रहे हो जिसने तुम्हारे 100 बेटों को मारा था, अरे कुत्ते की तरह यहां क्यों पड़े हो, जन्म सफल कर लो। रात को उठाया, निकला धृतराष्ट्र रात को, उंगली पकड़ी विदुर ने, गंधारी ने उनके पांव का आवाज सुना, गंधारी पीछे चली, तीनों निकल गए। या एक ध्यान देने योग्य बात है, अगर आप ध्यान देंगे तो बड़ा आश्चर्य लगेगा, इसी घर से, इसी सभा से, धृतराष्ट्र के घर से विदुर को अपमान करके निकाला गया था दुर्योधन ने, और जिसके घर से अपमानित होकर निकला था उसी के उद्धार के लिए
वापस विदुर वही आया है। इसलिए कहते हैं साधु को किसी से द्वेष नहीं होता, वो तो सबका उद्धार करने के लिए तैयार होता है। कहते हैं राम जी जब वापस आए थे 14 वर्ष वनवास से, तो पहले केकई के चरणों में पड़े थे। इसलिए भगवान और भगवान के भक्त किसी से द्वेष नहीं करते। ये बड़ा अद्भुत चरित्र है। और सुबह उठते ही बड़ा युधिष्ठिर दुखी होकर कहता है मेरा ताऊ कहां चला गया, वो मेरी सती माता कहां चली गई, इनको इस उम्र में कहां दुख भोगना पड़ेगा, वो विदुर जी कहां चले गए, काका जो हमारे रक्षक थे। दुखी हो रहा थे, नारद वहां आए। नारद ने कहा आप चिंता मत करो, संसार में सबको जाना पड़ता है, वो जहां गए हैं ठीक जगह पे गए हैं, वो तो हरिद्वार पहुंचेंगे, 5 दिनों के बाद सदगति हो जाएगी, धृतराष्ट्र की योग अग्नि से वो भी भस्म होगा, गंधारी उसमें प्रवेश करेगी, आप उसकी चिंता मत करो, समय आगे आने वाला है, भगवान भी जाने वाले हैं। अब युधिष्ठिर कहता है नारद ने संकेत किया था, श्री कृष्ण चले गए हैं। और यहां बात खत्म होते ही परीक्षित महाराज, आज सुबह हमने आपको एक बात कही थी कि जब वृंदावन में उद्धव कथा कर रहे थे भागवत की, तब परीक्षित को कहा था जाओ कलयुग के ऊपर विजय प्राप्त करो। अब परीक्षित महाराज दिग्विजय के लिए निकले हैं। दिग्विजय का मतलब 10 दिशाओं में, 4 दिशाएं अंग्रेजी भाषा में ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ है, लेकिन भारतीय भाषा में 10 दिशाएं हैं। 4 दिशाएं 4 कोने ऊपर और नीचे, इसको 10 दिशाएं कहते हैं। और दिग्पाल है इनके, इनके रक्षक है सारे, और दिग्गज रहते हैं, दिग्गज गज का हाथियों को बोलते हैं, हाथी इन दिशाओं में रहते हैं रक्षा करने के लिए। जहां जहां परीक्षित महाराज गए लोगों ने पांडवों की बड़ी प्रशंसा की, कहा कि आपके पितामह कितने महान थे, कितने रक्षक थे, कितने भगवान श्री कृष्ण उनसे प्रेम करते थे। ये जहां जहां परीक्षित ने अपने पूर्वजों का सम्मान की बातें सुनी, उनकी महिमा सुनी, हृदय गदगद हो गया। बच्चों को तब अच्छा लगता है जब बड़े बुजुर्ग कोई अच्छा काम दुनिया में करके जाते हैं, तो ये शिक्षा दी जा रही है कि बड़े बुजुर्गों को ऐसा काम करके जाना चाहिए, आने वाले बच्चों को वो सुन के बड़ा आनंद मिलना चाहिए। और अचानक परीक्षित महाराज एक स्थान के ऊपर आते हैं, देखते हैं एक बैल है एक टांग के ऊपर खड़ा है, एक गाय है दुख से पीड़ित है, आंखों से आंसू बहा रही है, और दोनों के पीछे राजा का वेश पहना हुआ काला कलूटा एक बहुत एक अभिमानी एक बहुत क्रूर व्यक्ति डंडे से इस गाय को और बेल को मार रहा है। परीक्षित महाराज से ये सहन नहीं हुआ, तलवार निकाली और कहा तुम कौन हो, मेरे राज में गाय के ऊपर डंडा मारने का तुम्हें अधिकार किसने दिया, तुम क्या समझते हो श्री कृष्ण भगवान के चरण चिन्ह इस धरती के ऊपर नहीं रहे इसलिए तुमने प्रवेश किया है। ध्यान देना जब तक परीक्षित राजा इस राज करेगा तब तक तुम किसी गौ ब्राह्मण की हत्या नहीं कर सकते हो, कृष्ण के आने का उद्देश्य ही गौ ब्राह्मण हिता है, वो तो गौ और ब्राह्मण की हिता के लिए आते हैं, गौ और ब्राह्मण के हित के लिए आते हैं। कांपा थर थर कांपते हुए वो चरणों में गिर पड़ा, बोला महाराज मैं कलयुग हूं, मेरा समय आ गया है। महाराज परीक्षित ऐसे अद्भुत व्यक्ति थे जिनको जन्म से पहले भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हुए थे, जिनका भगवान संबंध ही था, सुभद्रा भगवान की बहन उसकी दादी थी, जिसने कलयुग के ऊपर विजय प्राप्त की थी, कलयुग जिसके शरण में आके ग्रह के अपने जीवन दान मांग रहा था। और परीक्षित इतना दिव्य दृष्टि थी, उस बेल से पूछ रहा है कि आपको कौन मार रहा है, और बेल कहता है हरेक को अपना कर्म दुख देता है, कोई किसी को नहीं मारता है, डंडा उठाया हुआ आदमी सामने खड़ा है उसके ऊपर उंगली नहीं उठाई कि ये मेरे को मार रहा है। परीक्षित कहता है आप निश्चित रूप से धर्म हो, आप कोई देवता हो, आप धर्म हो, आप साधारण बेल नहीं हो। और तब कहा कि मैं धर्म हूं, मेरी 3 टांगें तो पहले टूट गई है, सत्य युग में 4 टांगों के ऊपर धर्म होता है, सफेद बेल धर्म ध्वल होता है, साफ होता है, 4 टांगें होती है, कल युग में केवल 1 टांग धर्म की बची है। और पृथ्वी गाय के रूप में खड़ी थी जो बहुत पीड़ित हो रही थी कल युग के अंदर। महाराज परीक्षित ने दोनों को आश्वासन दिया कि वृषभ और गाय माता मैं आपकी रक्षा करूंगा जब तक मैं राज करूंगा। कलयुग ने कहा महाराज हमको कोई स्थान दीजिए, कहीं तो रहूंगा, मेरा समय आया है। परीक्षित महाराज ने कहा वहां जाके रहो जहां नशा होता है, शराब पान होता है, वहां जाके रहो जहां पशु हत्या होती है, मांस आहार होता है, वहां जाके रहो जहां जुआ होती है, और चौथा स्थान आपको देते हैं जहां व्यभिचार होता है, विवाह से बाहर स्त्री पुरुष का संबंध होता है, वहां तुम जाके निवास करो। धर्म के चार स्तंभ होते हैं, धर्म चार खंभों के ऊपर खड़ा है। धर्म का स्तंभ है सत्य, दया और तपस्या और पवित्रता। सत्य, दया, तपस्या और पवित्रता धर्म के चार स्तंभ है जिसके ऊपर धर्म खड़ा है। दया जाती है पशु हत्या से, जो पशु की हत्या करके जवान के चशके के लिए मांस खाता है उसके अंदर दया नहीं रहती। तपस्या जाती है नशा करने से, जुआ करने से सत्य चला जाता है, और व्यभिचार करने से पवित्रता चली जाती है। चार धर्म के स्तंभ, और इनको गिराने के लिए चार ये स्थान कलयुग को दिए, और कलयुग हाथ जोड़ के कहते हैं महाराज आपके राज में ये नहीं मिलेगा, मैं कहां रहूं। तब पांचवा स्थान महाराज ने दिया, स्वर्ण में जाके तुम निवास करो, जहां कठा सोना होता है वहां जाके तुम निवास करो, जहां कठा होगा वहां झगड़ा होगा, झगड़ा कलयुग की परिभाषा होती है झगड़ा। आज आप देखिए ये चार चीजें जो परीक्षित के समय में मिल नहीं रही थी कलयुग में, नशा, मांसाहार, व्यभिचार और जुआ, आज चारों ओर इन चीजों का बोलबाला है, हर चौथा पांचवा घर इनका ग्राहक है। अरे आप लोग जैसे भले मानुषों के घर में भगवान का सिंहासन होता है, ठाकुर जी विराजमान होते हैं, गोपाल जी, लेकिन बड़े आदमियों के घरों में जाओ जहां ठाकुर जी पहले होते थे वहां सुंदर बार स्थापित है, बोतलें नाचती हैं वहां, यहां भक्त नाचते हैं वहां बोतलें नाचती हैं लोगों की, लोग जहां भगवान बैठते थे वहां शराब को लोगों ने बिठाया है, कलयुग उनके घर के अंदर जाके बैठा है, सरकार के सर के ऊपर कलयुग बैठा हुआ है, मांस के ऊपर सरकार का डॉक्टर ठंपा लगाता के खाओ, परमट शाप शराब का खुला हुआ है, जुआ खाने खुले हुए है, चारों ओर से कलयुग का बोलबाला है। और कलयुग को ये स्थान देके परीक्षित वापस अपने राज में आया। राज करते हुए एक दिन परीक्षित महाराज शिकार के ऊपर गए, क्षत्रिय का शिकार करने, धर्म के अंतर्गत आता है, बहुत खतरनाक जो खूंखार जानवर होते हैं शेर आदि के पीछे ये राजा महाराजा जाके उनका शिकार करते हैं। अपने अभ्यास और प्रैक्टिस के अंतर्गत महाराज अपने संगियों साथियों से बिछड़ गए, प्यास बहुत ज्यादा लगी और सम्यक ऋषि के आश्रम, और कलयुग को ये स्थान देके परीक्षित वापस अपने राज में आया। राज करते हुए एक दिन परीक्षित महाराज शिकार के ऊपर गए, क्षत्रिय का शिकार करने, धर्म के अंतर्गत आता है, बहुत खतरनाक जो खूंखार जानवर होते हैं शेर आदि के पीछे ये राजा महाराजा जाके उनका शिकार करते हैं। अपने अभ्यास और प्रैक्टिस के अंतर्गत महाराज अपने संगियों साथियों से बिछड़ गए, प्यास बहुत ज्यादा लगी और सम्यक ऋषि के आश्रम में प्रवेश किया। ऋषि ध्यान मग्न था, महाराज परीक्षित ने देखा कि स्वागत भी नहीं किया, पानी का भी नहीं पूछा। महाराज परीक्षित को थोड़ा सा दुख हुआ, बाहर निकलते हुए मरा हुआ सर्प देखा, तीर की नोक के ऊपर उठाया और ऋषि के गले में डाल दिया। कई बार आप सुनते हो और सुनाने वाले कहते हैं कलयुग महाराज के सर के ऊपर मुकुट था, उस सोने में जाके बैठा, ये हमारे आचार्य नहीं मानते हैं, नहीं मानते। जिसकी भगवान रक्षा गर्भ में कर सकता है क्या उसके ऊपर कलयुग कभी आके बैठ सकता है? कलयुग उसके नजदीक नहीं आ सकता है, कलयुग तो उसके चरणों में गिर के शरणागति लेके गया है, कलयुग नहीं, कलयुग का प्रभाव नहीं पड़ा परीक्षित के ऊपर। कलयुग ने जाके उस छोटे बालक सम्यक के बेटे के सर के अंदर जाके बैठा, कच्चे ब्राह्मण के अंदर शक्ति तो बहुत थी लेकिन ब्राह्मण ने शाप दे दिया कि मेरे पिता के गले में जिसने सांप डाला है मैं जल लेके कहता हूं 7 दिन में तक्षक इसको डस मारेगा और ये मरेगा। कलयुग का प्रभाव कलयुग का प्रभाव सबसे ऊपर वर्ण ब्राह्मण बालक के ऊपर गया, ये हमारे आचार्यों का मत है। और ये मत इसलिए भी है, इस परीक्षित को प्यास लगी थी इसलिए क्या सर्प रख दिया। अरे यहां से 7 दिन बाद में परीक्षित ने पानी तब तक नहीं पिया है तो प्यास परीक्षित को परेशान नहीं कर रही थी। मरना तो सबको एक दिन है। तब तो ब्रह्मास्त्र से भगवान ने अपने सुदर्शन से और गदा से रक्षा की थी। आज भगवान ये दिखाना चाह रहे थे, उस अस्त्र से मैंने रक्षा की थी, आज ब्रह्म वाक अस्त्र है, ये ब्राह्मण के वाक का सरात है, इसकी रक्षा मैं भागवत के वाक से करूंगा, ये भी दुनिया को मेरे को दिखाना है, भागवत का अवतार करना है, इसलिए मैंने ये काम, भगवान की लीला है। परीक्षित जैसे भक्त के ऊपर कलयुग का प्रभाव पड़ेगा तो भक्तों के ऊपर विश्वास करना लोग छोड़ देंगे, इसलिए हम इसको आचार्य कभी नहीं मानते हैं और कई संत महात्मा इसको नहीं मानते हैं। कुछ लोग अपने मन से कहते हैं जरासंध का मुकुट पड़ा था, सर में ऊपर डाल के आए थे, ये सब कहीं अपने मन की कथाएं, शास्त्र और आचार्यों की वाणी ये नहीं है। आचार्य ठीक तरह कैसे, उस वक्त बच्चा जब वापस गया उसके पिता को उधर जाके रोने लगा, पिता समाधि से उठा और कहा बेटा रो क्यों रहे हो, बोला आपके गले में सर्प, बोला इसमें क्या फर्क पड़ता, मरा हुआ उठा के फेंक दिया, बोला महाराज मैंने राजा को श्राप दे दिया। पिताजी ने कहा बेटा गलत काम किया, ऐसा राजा इस पृथ्वी के ऊपर नहीं मिलेगा, ये धर्मात्मा राजा था, ये प्रजा की रक्षा करता था, आपने आपने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया है बेटा। ऐसे भागवत में लिखा है सम्यक ऋषि ने अपने बेटे को श्रृंगी को इस काम के लिए निंदित किया और इस घटना के बाद क्षत्रिय कई विद्रोही हुए और तब से हमारी वर्ण आश्रम व्यवस्था बिगड़ना शुरू हुई। इसके बाद दूसरे स्तर के ऊपर वैश्यों को स्थान नहीं मिला, तब से जैन धर्म बना अलग। ये सब वर्ण आश्रम व्यवस्था कलयुग ने हमारे अपवर्णों के ऊपर अपना प्रभाव डाल के किए, इसके कारण वर्ण आश्रम व्यवस्था बिगड़ी हुई दिखाई देती है। सम्यक ऋषि ने अपने शिष्य को कहा भागो जाओ, महाराज परीक्षित को जाके हमारी तरफ से आशीर्वाद देना, हम जलपान नहीं करा सका, उसका हमको खेद है, लेकिन कहना कि मेरे बेटे ने आपको शराब दे दिया है, लेकिन आपकी सदगति हो हम ये शुभ कामना करते हैं। परीक्षित जाते हुए एकदम कहता है मुझे हो क्या गया, अरे मैंने महाराज महात्मा का अपमान कर दिया, अच्छा है कि मेरे शरीर अभी छूट जाए नहीं तो मेरा कुल नाश हो जाएगा। अरे ब्राह्मण के अपना अपमान से तो कुल नाश हो जाते हैं, एक वंश नाश हो उससे अच्छा है कि मैं ही प्राण त्याग दे। ऐसे दुख करता हुआ परीक्षित अपने महल में प्रवेश करता है और सम्यक ऋषि का बेटा दरवाजे के ऊपर आता है। महाराज को संदेश मिलता है कि महाराज ऋषि पुत्र आपसे मिलने आए हैं। महाराज वहां से ऐसे ही वापस लौटे, अंदर नहीं गए। ब्रह्मचारी ऋषि पुत्र को प्रणाम किया, पूछा कैसे पधारे बेटा। महाराज हमारे गुरुजी ने कहा है कि हमारे ना समझ बालक ने आपको शराब दे दिया है, 7 दिन में आपको तक्षक दाग के द्वारा डसा जाएगा, लेकिन गुरु ने सद्कामना की है कि आपकी सदगति हो। परीक्षित ने कहा भगवान मेरे को यहीं आपने मेरे अपराध की सजा दे दी, और परीक्षित उसी दरवाजे से जहां खड़े थे गंगा के तट के ऊपर चले गए, घर में नहीं गए, विदा नहीं किसी से ली, देखा भी नहीं आज राज को पीछे, तुच्छवत मंडलपति थे, तुच्छवत छोड़ के आ गए, राज को छोड़ के गंगा के तट पे परीक्षित आया, पूरे ब्रह्मांड में समाचार फैल गया, परीक्षित महाराज ने राज का परित्याग कर दिया, गंगा के तट पे जाकर बैठ गए हैं। सारे ब्रह्मांड से वही ऋषि जो परीक्षा जो भीष्म पितामह के प्रयाण के समय वहां थे, वो ऋषि अभी वहां वापस आने से वही आए ऋषि, वो सारे ऋषि अभी दोबारा आए, यहां व्यास भी आया, नारद भी आया, गौतम, अंगिरा, कणाद, पिपलाद, सब नाम लिखे हैं भागवत में, ऋषि अपने शिष्यों के साथ आए, सुकताल का स्थान है, सब ऋषि चारों ओर आके बैठे हैं। परीक्षित महाराज कहते ऐसे तो नहीं है कि ब्राह्मण का अपमान किया है और ये ब्राह्मण मेरा तिरस्कार कर दे। सबने पूछा आप महाराज कैसे, बोला मेरे से अपराध हो गया, ब्राह्मण से, ब्राह्मण का अपराध मुझसे हुआ, ऋषि का अपराध हुआ, तब ये कहते हैं सारे ऋषि, महाराज आप चिंता मत कीजिए, जब तक आपकी सदगति नहीं होगी तब तक हम यहां रहेंगे। परीक्षित का हृदय बुला रहे, ये ब्राह्मण मेरा भला करने की हितकारी है। तब सबको हाथ जोड़ के परीक्षित कहता है, अब परीक्षित के प्रश्न भी बड़ा अद्भुत है कि आप मुझे भगवान श्री कृष्ण की विष्णु की कथा बताएं अंत समय में, लेकिन फिर भी मैं आपसे पूछता हूं। और प्रश्न के दो भाग हैं, सब लोगों का सब समय सब जगह कल्याण हो वो एक रास्ता बताओ, और जिसका मृत्यु बहुत निकट हो उसको क्या करना चाहिए। इतने बीच में चारों ओर से सब बात हो रही, यज्ञ करना चाहिए, तप करना चाहिए, दान करना चाहिए। अब यहां परीक्षित के बीच में ये कथा हो रही है सुखताल में, वहां से सुखदेव गोस्वामी प्रवेश कर रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी प्रवेश कर रहे हैं अवधूत वेश में, दिशाएं जिसका वेश है, कोई वस्त्र नहीं पहना हुआ है। सुखदेव गोस्वामी का थोड़ा दर्शन कर लीजिए कैसा वक्ता है। वैसे तो ये सुख रूप से गोलोक में राधा रानी का तोता है, जो कृष्ण कृष्ण कहता है राधा रानी को आनंद देने के लिए। भागवत इसने भगवान शंकर से सुनी है, भगवान शंकर से भागवत सुनी है सुख रूप में। पार्वती को भागवत सुना रहे थे, क्यों सुना रहे थे आज समय नहीं है कहने का, है वो भी अद्भुत कथा, ये नारद के काम है। पार्वती को ना सती को कहता है, आपसे प्रेम करते हैं क्या शंकर जी, गले में नौजवान स्त्रियों की कितनी मुंडियां पड़ी हैं देखिए। अब तो घर में सती ने ऐसा उधम मचाया कि ये कौन कौन है जिसको गले में रख के बैठे हो। शंकर जी कहते तुम इस बात को मत पूछो, बोलो नहीं मत पूछो, नहीं मैं पूछूंगी, जरूर पूछूंगी। तब पार्वती को कहते हैं ये सब तुम्हारे कई जन्मों के सारे सर है जो मैं गले में डाल के बैठा हुआ हूं, जब जब तुमको मेरे साथ रही और गई तो मैं बोला फिर मेरे को अमर बनाओ, अमर बनाओ मुझे, तो बोला चलो अमरनाथ, गए अमरनाथ में। पार्वती वहां गई, भगवान ने तांडव नृत्य किया, तांडव ऐसा नृत्य किया सब वहां प्राणी चले गए, ये छोटा सा सुख वहां पड़ा था तोता। कथा सुनाते सुनाते पार्वती तो ध्यान में विभोर हो गई, भाव में, और ये तोता आ ऊ हा ऊ कर रहा है। शंकर जी ने देखा ये तो अधिकारी नहीं है, इसने कैसे सुन लिया, उठाया त्रिशूल पीछे भागा और ये तोता व्यासदेव की पत्नी के मुख से अंदर प्रवेश करके जाके बैठ गया और बाहर निकले ही नहीं। व्यासदेव ने कहा बेटा, जाबाल मुनि की बेटी थी व्यास की पत्नी, व्यास को जरूरत नहीं थी संसार के अंदर ग्रस्त में जाने की, लेकिन वेद शास्त्र का जो संकलन किया था शिष्य को देना चाहिए ना, शिष्य और पुत्र समान होते हैं, इस पुत्र की उत्पत्ति करने के लिए संजोग से। अब सुखदेव गोस्वामी मां के गर्भ में है, बाहर नहीं आ रहा है। व्यासदेव कहते हैं बाहर आ जाओ, बोला यस माया, माया भगवान की मेरे को पकड़ लेगी। सुखदेव महाराज बाहर नहीं आ रहे थे, बोला माया नहीं पकड़े, बोला माया आपके बस में है क्या। व्यासदेव उत्तर नहीं दे पाए, व्यासदेव द्वारका गए, श्री कृष्ण भगवान को मना के लाए, भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा सुखदेव आ जाओ, बोला माया, बोला मेरी माया तेरे को छुएगी भी नहीं। सुखदेव बाहर निकला, जैसे मां के उधर से बाहर निकला सुखदेव वन के अंदर चला गया, कोई संस्कार नहीं, और पीछे से व्यासदेव उसको ढूंढते हुए जा रहे, बेटा बेटा बेटा, केवल पेड़ कह रहे किसको बेटा मानते हो, ये तो सबके हृदय में निवास करता है। और आगे जाते हुए एक तालाब के अंदर स्त्रियां नहा रही थी, सुखदेव 16 साल का नंगा आगे से गुजर गया, स्त्रियों ने देखा तक नहीं उसको, व्यास पीछे चादर ओढ़ी हुई धोती पहनी हुई जा रहे हैं, सब स्त्रियों ने एकदम कपड़ा ढक लिया लज्जा से। व्यास को आश्चर्य हुआ, बेटी मैं आपके दादा के समान, मेरा बेटा नौजवान 16 साल का बिल्कुल नग्न अवस्था में आगे जा रहा है, उससे तो आपने कपड़ा ढका नहीं और मेरे को देख के कपड़ा ढक रही हो। वो कन्याएं कहती हैं, वो लड़कियां, वो स्त्रियां कहती हैं, महाराज आपके बेटे को स्त्री और पुरुष में अंतर क्या है इसका भी पता नहीं है, वो जैसे पेड़ को देखता है पहाड़ को देखता है ऐसे हमको भी देखता है, लेकिन आप ग्रस्त में रहते हो आपको मर्यादा का पता है, इसलिए आपको देख के हमको संकोच हुआ, आपका बेटा इन चीजों से बहुत ऊपर है। ऐसा परीक्षित महाराज, ऐसा सुखदेव महाराज घर से चला गया। व्यासदेव ने बोला जिसके लिए घर गृहस्थी बनाई वो बेटा ही नहीं रहा, चला गया कहीं वनवास, तो अभी मैं क्या करूं, तो तपस्या करने लगा। वो तो ब्रह्मनिष्ठ था, ब्रह्म के आनंद में मस्त था, ऐसे समाधि में रहता था। अब क्या किया, व्यास देव ने अपने शिष्यों को जैमिनी पायली आदि को कहा कि तुम भागवत का गान करो जाके वन में, और एक जगह सुखदेव ध्यान में बैठे हैं और गान करते हुए जा रहे हैं। क्या गान करते हैं, तीसरे स्कंद भागवत से, आई बकी काल कूटम, बकासुर की बहन पूतना कालकूट विष स्तन के ऊपर लगा के आई कृष्ण को स्तन पान करा के मारने के लिए, लेकिन गोविंद ने उसको धात्री गति दे दी। अरे जो मारने आए उसको मां का स्थान दे, इससे ज्यादा और कौन दयालु हो सकता है। ये सुनते हुए सुखदेव की समाधि टूट गई। बोला क्या कहा, क्या कह रहे हो, बोले कहे, फिर एकदम समाधि में चले गए। अब दूसरे दिन वहां से जाते हुए वेणु गीत का गाते, वहा पीड़म नटवर वपू करण युकर, ये भगवान का नट रूप वन में प्रवेश करने वाला सुनते हुए ब्रह्म आनंद को ऐसे फेंक दिया सुखदेव गोस्वामी ने जैसे किसी काम का नहीं हो, उनके पीछे जाके खड़ा हो गया। कहां जा रहे हो, किसने कहा, कौन है? बोला ये हमारे गुरुजी ने सिखाया। व्यास देव के पास आए और भागवत का पूरा अध्ययन किया। और सुखदेव महाराज इस भागवत का अध्ययन करने के बाद भी लगता था पागल है, लड़के और लड़कियां उसके पीछे आ रही थी हस्तिनापुर से जाते हुए। जैसे ही सुखदेव महाराज सुखताल में पहुंचे, सब उठ के खड़े हो गए। परीक्षित महाराज उठ के खड़ा हो गया, केवल नारद और व्यास को छोड़ के सब उठ के खड़े हो गए। नारद व्यास पिताजी था और नारद जी उनके गुरु थे, वो छोड़ के सब उठ। अब तो बच्चे हो और लड़कियां जो थी एकदम भाग गई, है तो कोई आम आदमी नहीं है, हमने समझा पागल है, ये तो महाराज इसके लिए उठ के खड़े हो गए हैं। सब ने सुखदेव गोस्वामी को आके आसन के ऊपर विराजमान किया। परीक्षित महाराज उनके सामने बैठकर और प्रश्न करते हैं कि आप कृपा करके बताइए कि अंत समय मुझे क्या करना चाहिए और सब लोगों का सब जगह सब समय कल्याण कैसे होगा। राजा उसको कहते हैं जो पहले प्रजा का भला सोचे फिर अपना भला सोचे। यहाँ पहला स्कंद समाप्त होता है 19 अध्यायों में, दूसरे स्कंद में 10 अध्याय है, और इन 10 अध्यायों में पहली बार सुखदेव महाराज बोलना शुरू करेंगे। और 10 अध्यायों में 3 विभाग है, 10 अध्याय है, 3 विभाग है, 2, 2, 3, 3। पहले 2 अध्याय ध्यान के मार्ग से भगवान को जानना, और फिर 2 अध्याय श्रद्धा भगवान के ऊपर होना, भगवान को प्राप्त करने का साधन केवल श्रवण है, ये दूसरे स्कंद का उद्देश्य है। 3 अध्यायों से उत्पत्ति के द्वारा भगवान सृष्टि का कैसे सृजन करता है, और 3 अध्याय अंतिम में युक्ति के द्वारा उपपत्ति के द्वारा भगवान को कैसे प्राप्त किया जाए। ऐसे 10 अध्यायों में दूसरे स्कंद का वर्णन है। सुबह इसके ऊपर और थोड़ी चर्चा करेंगे। लगता है कि घड़ी देख रहे हैं, टाइम अपने सीमा के ऊपर पहुंच गया है क्या? हाँ, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे राम, राम राम, हरे हरे। जब समय का पता नहीं लगे तब समझना चाहिए कि हम देश काल से दूर चले गए हैं, भगवान की गोद में बैठे हैं। ऐसे पता नहीं लगे कि समय बीत गया है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन घड़ी को देखते हैं तब